आप देखिए कि हमेशा माँ की बात सुन के, माँ के प्यार को सुन के हमारी आंखें भीगती हैं ना। तो आइए अब 70 माँ से ज़्यादा प्यार करने वाली जात की बात सुनते हैं और दुआ करते हैं कि हमें इस रब की कदर आ जाए जिसने हमें माँ जैसी प्यारी हस्ती दी। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फाऊसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बी श्रहली सत्री व यस्सिरली अमरी واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة بقرة کی آیت نمبر 183. मेरा ख्याल है कि हम में से अक्सर साथियों को ज़ुबानी याद है। जब भी रमज़ान आता है अमूमन इसी आयत की रोशनी में वेलकम रमज़ान के प्रोग्राम होते हैं और हम सोचते हैं कि रमज़ान इसलिए आया कि हम थोड़ा सा खाने पीने के वक्त को इधर उधर कर लें और कुछ कुरान ज़्यादा पढ़ लें, यानी कुछ ज़ाहरी इबादात के बाद कुछ आदात को बदलने का नाम रमज़ान नहीं है। हम बात करेंगे कि रमज़ान का पैगाम लअल्लकुम तत्तकून, तकवा क्या होता है। कल अल्हम्दुलिल्लाह एक दर्स था, हमने वहाँ यह टॉपिक शुरू किया, उसी में कुछ मज़ीद चीज़ें लेंगे। अभी तक की जो बात है उसमें से सिर्फ आपकी दोहराई के लिए तकवा की जो तारीफ़ हमारे सामने आती हैं, थोड़ी सी मुश्किल बातें अगर लगें कभी तो ये सोच लिया करें कि फाइन ना माल उसरी यूसरा, मुश्किल में ही आसानी है। तो तकवा अल्लाह ताला से झिझक का नाम है कि मैं अल्लाह को कल क्या मुंह दिखाऊंगी। मिसाल से बात वाजे करना चाहूंगी, हम इंसानी मामलात में जब किसी की कोई बात नहीं मानते या हम जब किसी की बात को पीछे कर देते हैं जबकि वो हमारे पास नहीं, तो हम फिर भी कहते हैं इट्स ओके। लेकिन खौफ किससे ना रहा होता कि अगले ही दिन किसी शादी के मौके पे उस बंदे से सामना होना है। अमूमन ऐसा आपने देखा है इंसानी मामलात में हम सामना किए जाने से बहुत डरते हैं, कहते हैं अब अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं सबके बीच में वो मुझे क्या कह देंगी। बस इस कैफियत को बहुत ज्यादा बढ़ा लीजिए कि क्यामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाऊंगी तो वो मेरे साथ कैसा मामला करेगा। एक तारीफ जो हमने तकवा की देखी उसको दोहरा देती हूँ। अत तकवा हियल खौफ मिनल जलील, तकवा एक बहुत बड़े जलाल वाले रब का खौफ है। शर्म झिझक कि मैं अपने रब के सामने जाऊंगी तो कल वो मुझसे मेरी जिंदगी की बातें ना पूछ ले। वल अमल बित तंजील, दूसरा दर्जा तकवे का होता है उसके नाजिल करदा पर अमल करना। गोया के कुरान और सुन्नत पर अमल का नाम भी तकवा है। ये कोई एक बेजान चीज नहीं है कि हम कह दें कि तकवा एक साइड पे और जिंदगी दूसरी साइड पे। तकवा का ब्राह रास्त असर इंसान की जिंदगी पे पड़ता है। जो भी अल्लाह ने नाजिल किया उसको मानूंगी। और इसका तीसरा दर्जा वर रदा बिलकलील, थोड़े पे ही राजी रहना। अल्लाह तूने जो दिया उस पे भी राजी और जो नहीं दिया उस पे ज्यादा खुश और खुश और खुश। एक मारूफ वाक्या जो एक बुजुर्ग के साथ पेश आया अब्दुल्ला बिन मुबारक के बारे में आता है कि सहरा में थे, भटक गए, रास्ता खो गए, परेशान थे किधर जाऊं। इतने में दूर एक कुछ झोंपड़ी दिखी, करीब गए तो बाहर से आवाज आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिन मब्तिला कबिही वफद्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक तफ़दीला, के अंदर से एक बुजुर्ग की आवाज आ रही है कि अल्लाह तेरी बड़ी तारीफें हैं कि तूने मुझे उन मुसीबतों से बचा लिया जो दूसरों को दी थी और मुझे अपनी मखलूक पे तूने बड़ी फौकियत दी। खैर अंदर गए क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग है, जिस्म का कोई उज्व सलामत नहीं सिवाय जुबान के, और जुबान पे अल्लाह का शुक्र है। सलाम किया, पूछा बुजुर्गों क्या हाल है, कैसे हैं? मैं तो आपको इस हाल में देख रहा हूं कि आपके जिस्म का कोई उज्व भी ठीक नहीं, और आप कह रहे हैं कि फद्दलनी अला कसीर मिम्मन खलाक तब्दीला, कि अल्लाह तूने तो मुझे अपनी मखलूक में से सबसे ही ज्यादा दिया। तो ये मुझे बात तो नहीं समझ आई। कहने लगे कि क्या दुनिया में बहुत सारे लोग कुफर पे नहीं है, जबकि मैं इस्लाम पे हूं, तो अल्लाह ने मुझे मखलूक पे फौकियत दी। कहा कितने ही लोग हैं जो मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते, अल्लाह से उनको प्यार नहीं। तो मुझे अल्लाह ने अपना शऊर दिया। गिनाते गए गिनाते गए, अब इनको शौक पैदा हुआ कि ये हैं कौन कि जिनको इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने फहम दिया। कहने लगे बुजुर्गों आप कौन हैं, मुझे अपनी कहानी सुनाए। कहा कि मैं अपनी कहानी तुम्हें एक शर्त पे सुनाऊंगा। कहा शर्त क्या? कहा बाद में बताऊंगा। कहा ठीक है मान लेता हूँ, सुनाए। कहने लगे कि मेरे बेटा भी था, मेरी बहू, मेरा पोता, यानी मेरा एक खानदान था। मैं बड़ी खुशबाश जिंदगी बसर कर रहा था। हालात ने कुछ इस किस्म से पलटा खाया कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी बहू भी मर गई, जो दौलत ही चली गई, और मैं इस हाल में जिस्म की टूटी हुई हड्डियों के साथ तुम्हारे सामने हूं। अब मैं और मेरा एक पोता, हम दो सिर्फ जिंदा, 8-10 साल का बच्चा, और दुनिया में हमारा कोई नहीं। कहा कि आपकी गुजर बसर कैसे होती है? कहा बस मैं इधर हूं और वो बच्चा जाता है बाहर, कुछ ना कुछ कर करा के, मेहनत मजदूरी, तो कुछ कमा के ले आता है, खिलाता है, रोटी लाता है, मैं भी खा लेता हूँ, वो भी खाता हूँ। कहा अच्छा, अल्लाह ताला ने आपको आजमाया है तो वो बड़ी बात है। कहा अब आपको मुझसे क्या काम है? कहा कि वो जो मेरा बच्चा है ना, वो कल से वापस आया नहीं है, पोता मेरा, तो तुम उसको ढूंढ लो। मैं यहां से जा नहीं सकता, लेकिन मुझे फिक्र है कि मेरा पोता किधर है। खैर ये वहां से निकलते हैं ढूंढने के लिए, जाऊं किधर, जाऊं देखो क्या। दूर इनको गिद्ध उड़ते हुए दिखते हैं, वॉल्चर्स। और आपको पता है कि गिद्ध कहाँ आते हैं? जहां लाशें होती हैं। ये उस तरफ गए और देखा कि रेत पे एक बच्चे की लाश है, वही उम्र है जो उन्होंने बताई। कहते हैं कि मुझे समझ आ गया कि ये उन बुजुर्गों का पोता ही है। अब मैं जाऊं तो क्या कहूं, वापस आते हैं। अब दिल में सोच है कि कैसे उस बुजुर्ग को अब ये भी खबर दूं कि वो एक बच्चा भी नहीं रहा। लेकिन झूठ तो नहीं बोलना, बोलना तो सच है। खैर ये वापस उस कुटिया में आते हैं। जो ही इनके कदमों की आवाज आई तो वो बुजुर्ग जो थे वो खुशी से कहते हैं अच्छा आ गया मेरा बच्चा। नबीना भी थे वो बुजुर्ग। कहा पोता मेरा आ गया। कहते हैं कि बाबा जी मैं आपको बताता हूँ, पहले मेरे चंद सवालों के आप जवाब दें। कहा बोलो। ये बताइए कि अल्लाह ताला को आपसे ज्यादा प्यार है या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था? कहा यकीनन याकूब से प्यार था। कहा अच्छा ये बताइए कि अल्लाह सुबहान ताला को आपसे ज्यादा प्यार है या दाऊद से, यानी चंद नबियों के नाम लिए, किसा मुख्तसिफ जो एक कमो बेश जो भी बात होगी। उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि अल्लाह को नबियों से ज्यादा प्यार था मेरी नस्बत। तो कहा कि फिर बाबा जी अपने पोते पे सब्र कीजिए, वो दुनिया में नहीं है। इस बात को सुनकर उनके मुंह से एक चीख निकली और उनकी रूह परवास कर गई, वो बुजुर्ग फौत हो गए। कह लें आज की जुबान में शौक, कुछ भी सदमा। अब इन्होंने अल्लाह के हुक्म से उनको जो भी इंतजाम करना था कफनाने का, दफनाने का, वो किया। और बड़ा दिल में बोझ था कि कितना दुख सहता हुआ दुनिया से बंदा गया। रात को ख्वाब में देखा कि वही बुजुर्ग जो भी चंद घंटे पहले इतनी खस्ता हालत में थे, बिल्कुल सेहतमंद, जवान, और चेहरे पे सब नेमतों का असर है और खुश दिख रहे हैं। तो ये उनको कहते हैं कि बाबा जी ये आप वही हैं जब भी कुछ अरसा पहले, कुछ घंटे पहले आपके हालात बड़े खराब थे। कहा हाँ मैं वही हूँ। कहा, आपकी ये हालत कैसे बदल गई? तो उस पे कुरान की आयत पढ़ते हैं, जजाम बिमा सबर तो फने मा उकबदार। सूरह रात और बहुत सारी जगहों में ऐसी आयतें आती हैं। कहा कि अल्लाह ने मुझे मेरे सबर के बदले ये सब दिया। तो जी साथियों, ये बात सुन के कमी बेशी से अल्लाह ताला हमें माफ करे, लेकिन जज्बात तो उभरते हैं, लेकिन वह रदा बिलकदीर, थोड़े पे राजी होना, ये है तकवा। हम सब रमजान का रोजा रखने वाले हैं, हम चाहते हैं कि इस रमजान को हम अपनी जिंदगी का बेहतरीन रमजान बनाएं। क्या मैं अपनी नेमतों पे खुश हूं? हम तो कहते हैं हल में मजीद, हल में मजीद। जहन्नुम में जाने के बाद जब लोग जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे तो अल्लाह ताला जहन्नुम से पूछेंगे, हलिम तलाती, क्या तू भर गई है, क्या तू भर गई है? वो कहेगी हल में मजीद, और भी है तो ले आओ। कौन लोग हैं हल में मजीद के नतीजे में जहन्नुम में फेंके जाने वाले? जिनकी जिंदगी का शुआर ही यही था, और चाहिए और चाहिए, खूब से खूब तर की तलाश, अपने लाइफस्टाइल को ऊंचे से ऊंचा करने के शौक में हम क्या कुछ कर रहे होते हैं। तो जो दिया है ना अल्लाह ने, उस पर राजी रहिए, ये इबादत की किस्म है। रदा, खुश होना। अगर आप कभी इंसान के वो औसाफ सुने, और इंशाल्लाह पर अगर बाद में आपको बताते हैं सेवंथ को, आप बहुत कुछ सुनेंगे इंसानों के बारे में अगर अल्लाह ने चाहा तो उसमें ये बात होगी कि बंदे से रब को जो मतलूब है ना, वो रादी बिल रदा। हम सब सुबह फजर और मगरिब के बाद कम से कम 3 दफा ये दुआ पढ़ते हैं ना अस्कार में, कि रदी तो बिल्लाहि रब्बम वबिल इस्लामि दीनम वबि मुहम्मदिन नबीय। अल्लाह के नबी ने कहा कि जो सुबह शाम ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह उसको राजी कर देगा। सिर्फ आखिरत की रजा नहीं है, दुनिया की भी रजा है। इसलिए इंसान जब भी कोई जिक्र करे तो उसके अंदर डूब के देखे। एक बुजुर्ग थे, नवीना थे, नेक बहुत थे। एक दिन किसी ने आर दिया, बड़े नेक हैं आप, क्या अल्लाह से आंखें नहीं मांग सकते? जैसे आज हमारे यहाँ कुछ लोगों का गुमान है ना कि फलां बुजुर्ग अल्लाह के ऊपर उनका बड़ा जोर है, बड़ी जबरदस्ती है, कहते हैं ना इनकी अल्लाह मोड़ता नहीं, साड़ी सुनता नहीं, ते अन्ना दी मोड़ता नहीं, नाउज़ुबिल्ला, सरासर शिर्क और कुफर वाला जुमला है। तुमसे किसी ने कहा कि आप अल्लाह से आंखें क्यों नहीं मांग लेते, तो उस पर उन्होंने एक जुमला बोला था, कदर अल्लाहु अहब इलैया मिन बसरी, अल्लाह की मुकर्रर करता हुआ तकदीर मुझे अपनी आंखों से ज्यादा प्यारी है। यानी मैं इस पे बड़ा खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे नबीना रहने रखने का फैसला किया, तो आई वेलकम माई अल्लाह डिसीजन व रदा बिल कदीर। अगला दर्जा तकवा का होता है वल इस्तेदादु लियौम रहील, वापसी के दिन की तैयारी करना। रहलत फरमाने का लफ्ज और तुम्हें अपने सुना होगा, फलां दुनिया से चले गए। तो तकवा के 4 दर्जे देखे हमने, खौफ मिनल जलील, बेखौफ नहीं होता इंसान, मुत्तकी अल्लाह से डरता है, खौफ खाता है, पकड़ हो जाएगी, अल्लाह मुझे पकड़ेगा तो मेरा क्या मामला होगा, अगर मैंने अल्लाह सुबहान तआला की ना मानी और उसके सामने गया तो क्या मुंह लेके जाऊंगा। फिर अमलु बित तंजील, आप सब दोहराना चाहते हैं ये जुमले, बोलो, मुश्किल लगेंगे लेकिन शायद आपको ये अपने ही बोले हुए लफ्ज बाद में याद दिलवाएं कि हमने इस रमजान से क्या लेना। एक एक लफ्ज बोलती हैं, आप मेरे पीछे दोहराइएगा, अत तकवा हियल खौफु मिनल जलील वल अमलु बित तंजील वर रिदा बिल कलील वल इस्तेदादु लियौम रहील। तो हमने इस साल रमजान से ये 4 चीजें ले ली हैं, फ्रूट्स ऑफ रमजान क्या होंगे? अल्लाह का खौफ, लिखिए अल्लाह का खौफ मांगना इस रमजान में। बेखौफ बंदा सरकश हो जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान पाक में सूरत अर-रहमान में क्या कहते हैं, वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसको 2 जन्नतें मिलेंगी। सूरत नाजियात में या उसके अगली सूरत सूरत नाजियात में गालिबन आता ना, वह अम्मा मन खाफ व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा, कि जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को काबू में पा लिया, बेशक जन्नत उसका ठिकाना है। तो ये रमजान हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। हम सब अपने बच्चों और अपने जवानों पे भी बात करें, आप माओ ने बच्चों के रमजान के लिए बहुत कुछ तैयार किया होगा। बस अब हम ये सोच लेते हैं कि हमारे बच्चों को खानों की जरूरत है क्योंकि इन्होंने रोजा रखा है। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि माएं अपने बच्चों की पसंद की चीजें बनाती हैं, और खैर से आज के दौर में पसंद सबकी मुख्तलिफ है, तो फिर माएं ज्यादा वक्त किचन में गुजार देती हैं। एक को अगर पकौड़े पसंद है तो दूसरे के लिए समोसे और तीसरे के लिए रोल्स, मिलती जुलती तीन चार चीजें माएं बना देती हैं। हालांकि आप देखिए कि एक इंसान अगर अपने बच्चे को तरबियत देना चाहता है, तो इस साल हमने अपने बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाना है। कैसे सिखाना है? खुद सेल्फ पे कंट्रोल करके। जब तक हमारा अपना काबू नहीं होगा अपने ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे बच्चों पे हमारा काबू नहीं होगा। अल्लाह का खौफ एक इंसान को इस तरीके से रोक लेता है कि वो पाँव पकड़ लेता है, जुबान पकड़ी जाती है। हमने अपनी जुबान को भी पकड़ना है। अल्लाह का खौफ नेमत है। मोमिन शख्स तमर्द मोमिन, अल्लाह सुब्हान तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वो दो शख्स जिन पे अल्लाह ने इनाम किया, क्या कि उनको अपना खौफ दिया। आज भी आपको कुछ लोगों पे रश करता, इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, आप कहते हैं हो क्या क्या, छोड़े, मजबूर है, रुख्सत मौजूद है, इट्स ओके। वो कहते नहीं, मुझे अल्लाह से डर लगता है, मैं अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता हूँ, मुझे ये लुकमा मुंह में डालते हुए खौफ आता है कि शायद इसकी वजह से मेरी नेकियां जाया ना हो जाए, शायद मेरी दुआएं कबूल ना हो। हम रमजान के रोजे रखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हलाल से रखें और हराम से तोड़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो औरतें लाई गई जो रोजे का दावा कर रही थी कि हम रोजे से हैं, हालांकि उससे पहले वो गीबत कर चुकी थी। तो आपने कहा कि क्या करो, सुना होगा वाकया। और जब उन्होंने क्या किया तो ताजा गोश्त के टुकड़े उनके जिस्म से निकले। तो आपने कहा कि आप तो यहां आने से पहले रोजा इफ्तार कर चुकी हैं, तो क्या मैं गीबत से तो रोजा इफ्तार नहीं करती? एक जुमला खुद से लिखिए, एक जुमला मुमन हमारे यहाँ बोलते हैं, आज रोजा किस चीज से खोलना है? अमूमन हम खाना खा नहीं सकते ना, तो खाने की बातें करते रहते हैं। ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर है, माजरत के साथ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। हम या खाना खा रहे होते हैं या खाने की बातें कर रहे होते हैं या खाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, आज क्या बनेगा, आज ये बनाऊंगी। और बादशाह माशाल्लाह बड़ी ऑर्गेनाइज वुमेन है, उन्होंने पूरे 30 दिनों का मेन्यू अभी से बनाया हुआ है और उसके पैकेट्स अपने लोगों के हिसाब से बना के रखा हुआ है। ऐसे मौजूद है ना लोग। लेकिन आज किस चीज से रोजा खुलेगा, इस जुमले को बोलते हुए सोचते हुए हमने अपना मुहासबा करना है। और वो क्या, कि कहीं आज मैंने गीबत से तो रोजा नहीं खोलना, आज अल्लाह की नाफरमानी से तो नहीं खोलना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितने ही लोग हैं कि जो रोजा तो रखते हैं लेकिन भूख और प्यास के सिवा उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए इंशाल्लाह हमने फिक्र करनी है, तकवा वाली जिंदगी बसर करनी है। फिर इसी तरह आप देखिए कि तकवा का एक और बड़ा खूबसूरत एंगल है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तकवा यह है कि अल्लाह ताला पर इसके अलावा किसी को फजीलत ना दी जाए और यकीन रखा जाए कि तमाम मामलात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तकवा क्या है? तौहीद सिखाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाता है। मैंने जब ये जुमला आपके सामने बोला, अल्लाह के मामले में या अल्लाह पर किसी को फजीलत ना दी जाए और ये सोचा जाए कि अल्लाह ताला मेरे सारे मामलात सुझाता है, मैं पूरे शऊर के साथ कहूंगी जितने साथी यहां बैठे हैं, अगर हमारा इस बात पर ईमान हो जाए तो हम मुस्कुराते हुए सोएं और खिलखिलाते हुए हंसे उठें। हमारे चेहरे पे इज़्तिराब ना रहे। आज इंसानियत को जो गम लगे हुए हैं ना, परेशान सब कुछ है लेकिन तफक्कुरात रह जाते। बेटी जवान हो रही है, इसका रिश्ता कैसे होगा, पता नहीं बेटे का क्या होगा, कैसे होगा। हम कहीं थे तो एक माँ जैसे एक धौंस और जबरदस्ती के अंदाज में अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही थी और करवा रही थी, और इतनी तड़प मैंने उनकी आंखों में देखी। और क्या है कि बच्चे का जो दुनिया का इम्तिहान है, मेरा बच्चा उसमें कामयाब हो जाए। मैंने कहा ठीक है टीसी प्लीज सिस्टर। बिल्कुल उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था जिस बात की वजह से। मैंने कहा कि अल्लाह आपके बेटे को दुनिया और आखिरत के सारे इम्तिहानों में कामयाब करे। कह रही नहीं, दुआ करे मेरे बच्चे का इम्तिहान जो हो रहा है उसमें पास हो जाए। ये वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। हमें इसकी फिक्र है कि मैंने रब को उसका मुकाम दिया नहीं। और आप देखिए कि अल्लाह के मामले में किसी दूसरे को फजीलत देना कैसे होता है, कब देते हैं। फजल लफ्ज का मतलब पता है आपको, फादलाम। फजल कहते हैं फालतू को। ये जो लफ्ज फजूल है ना, फजूल बातें ना करो, ये भी इसी से, फजूल एक्स्ट्रा मोर देन। तो फजल क्या होता है, एक्स्ट्रा है मेरे और आपके अमलों से। कहते हैं ना हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। हजरत दाऊद ने बोला था, हजरत सुलेमान अपनी नेमतों को देख के ऐसे जुमले बोलते हुए दिखते हैं। फजल क्या होता है कि जो हमारी किसी नेकी से भड़के मिले, और इसको अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार भी कहा गया कुरान पाक में कि लिल्लज़ीन अहसनु अल-हुस्ना व ज़ियादतुम, ज्यादा मिलेगा इनको फजल से क्या, अल्लाह के चेहरे का दीदार। तो दिन में कितनी बार अल्लाह के मामले में दूसरे को फजीलत देती हूँ, ये खुद से पूछिए। हमारा तो हाल ही अजीब है। सबसे पीछे अल्लाह की जात रहती है वल्लाही। जिस वक्त हमारे पास कोई ना हो, कोई उजर नहीं, कोई बच्चा सर पे सवार नहीं, कोई शोहर का तकाजा नहीं, कोई खानदान नहीं, फिर तो कहते हैं अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ एक भाई या बहन के घर शादी का ही मौका क्यों ना आ जाए, फिर पूछें कि अल्लाह के मामले में किसको फजीलत देती हूँ। हम कहते हैं लोगों को राजी करने, जी नाराज हो जाएंगे, ये रिश्तेदारियां भी तो निभानी। और दुख की बात कहे कि अल्लाह के नबी की हदीसें कोट करते हुए अल्लाह को ना की नाफरमानी कर रहे होते हैं, कभी सिला रहमी के नाम पर कहीं कुछ। तो हम सब के लिए एक मेयार है कि हमने अल्लाह के मामले में किसी को फजीलत नहीं देनी। सबसे ऊपर मेरा रब और सबसे नीचे मेरी जात। देखिए मैं आपको छोटी सी आम जिंदगी से मिसाल देना चाहूंगी कि आप खाना पकाते हैं ना, हर चीज की एक जगह होती है। मिसाल है कि आप पुलाव बना रहे हैं, सबसे पहले क्या डालते हैं पतीली में, ऑयल, फिर क्या डालते हैं प्याज, फिर उनको फ्राई करते हैं, फिर पानी डालते हैं ना, तभी उसका रंग निकलता है और खुशबू आती है ना। आप रखें प्याज भी, घी भी रखें, पानी भी रखें, सिर्फ फजीलत देना बदलता है। ऑयल को फजीलत दी थी ना पानी पे और प्याज पे पहले, और ठंडे ठंडे घी में भी नहीं डालते प्याज कि जरा गर्म हो तो कड़क हो ताकि उसका सारा पानी जल जाए और प्याज फटाफट सुर्ख हो जाए। आप पहले पानी डालें, फिर उसके अंदर आप प्याज डाल दें, फिर उसी के अंदर ऑयल के दो चम्मच डाल दें, आप रात तक उसको पकाते रहे, वो प्याज फ्राई नहीं होगा, ब्राउन नहीं होगा, तरतीब बदल गई। बस इसी को आगे ले आइए, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जब तक अल्लाह की जात हमारी जिंदगी में सबसे ऊपर नहीं आ जाती ना, आपको और मुझे तकवा नसीब नहीं होगा। तो ये जो मैसेज हम कन्वे करें, कल का भी दर्स और परसों का, दो दर्सों में, परसों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मेन प्रोग्राम था मैनचेस्टर का उसमें बात शुरू की थी, कल लिवरपूल में कुछ बात हुई, और आज इसको इख्तिताम पे रखना चाहती हूँ कि रमजान से जो सीख नहीं, अब उसका अगला नंबर डाल के लिख लीजिए कि मैंने अल्लाह को सबसे ऊपर रखना सीखना है, प्रायोरिटाइज करना। जैसे केक बनाते हैं तो सबसे ऊपर आप ड्रेसिंग करते हैं ना, आप अंदर ड्रेसिंग करके ऊपर उसके फिर केक का पाउडर डाल दें, कुछ फायदा नहीं होगा। जिंदगी का हुसन अल्लाह को सबसे ऊपर रखने में, जैसे केक का हुसन ये कि आप सबसे ऊपर फ्रूट डाल देते हैं, कहीं स्ट्रॉबेरीज लगा देते हैं, कहीं उसमें पाइनएप्पल लगा देते हैं, कहीं ऊपर आप क्रीम, व्हिप क्रीम, फूल पत्तियां, क्या कुछ बनाते हैं ना, फिर वो केक खूबसूरत लगता है। आज अगर हम परेशान हैं ना, तो उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह को दबाकर उसका हक दूसरों को दिया हुआ है। और सारे मामले मेरे रब के हाथ में है, ये यकीन तो रखिए। शुरू में हमारा वक्त जाया हुआ ना थोड़ा सा। किसके हाथ में था ये काम? जो इंतजाम बाद में हुआ 10-15 मिनट की देरी से, वो 10 मिनट पहले भी तो हो सकता था ना। देखिए जिंदगी में परखा करें, जो चीज 15 मिनट बाद जो जहन में आई वो पहले क्यों नहीं आ गई? क्योंकि सारे मामलात मेरे अल्लाह के हाथ में। वमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह, मेरा रब जो चाहे। करके देखिए आपके कंधे हल्के, ऐसे लगेगा आपको कि सबसे ज्यादा आप इस वक्त खुश हैं। फिर एक मिसाल जहन में आती है, शादी में गए हुए आप, हाथ में जेवर का डिब्बा भी है, पर्स में रखा हुआ है, अब इंजॉय भी करना चाहते हैं, अब वो ले लेके फिर रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा, रखूं तो किधर रखूं। इतने में एक टेबल के पास, टेबल चेयर है, देखा एक, इतने में देखा तो माँ नजर आ गई। बेटियां क्या करती हैं, ला के ना वो तो यूं माँ की गोद में रखती, इसको पकड़े, बच्चा भी है तो उसको भी पकड़ाती हैं, ये पकड़े इसको, मुझे जाना। और फिर बेफिक्र, पता ये है कि माँ छोड़ के नहीं आएगी, किसी और का ले आए बेशक बेटी का, समझ के छोड़ के नहीं आएगी माँ। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि माए अल्लाह की बना, उनको आप कुछ बता तो दें, फिर देखें वो कैसे पीछे लगती है। जब एक जेवर की पोटली माँ के हाथ में देकर हम मुतमईन होते हैं, तो जिंदगी की पोटली अल्लाह के हाथ में देकर जो सुकून है ना, इसी को अल्लाह ताला ने कहा कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के दोस्त वो होते हैं कि जिनको ना कोई गम होगा ना खौफ होगा। इस रमजान में ये लीजिए, घबराहटें खत्म करें, पैनिक नहीं होना। बंदा है मोमिन हर हाल में मुस्कुराता है, क्योंकि मेरे मामलत मेरे रब के हाथ में, कुछ भी नहीं होगा। आप देखिए कि आप इमेजिनेशन में लें, कोई मेला है, बहुत सारे लोग हैं, बाप के साथ उसका चार 3-4 साल का बच्चा, बाप क्या चाहता है कि बच्चा मेरी उंगली पकड़ ले, क्योंकि इस मेले में खो गया तो किसी के हाथों में चल जाएगा। बच्चे की क्या ख्वाहिश होती है उस वक्त, उंगली छुड़ाऊं। उसको बाप का वो उंगली पकड़ना एक बोझ लग रहा है, उसको लगता है कि ये मेरे बाप ने क्या मुझे पाबंदी दी, उसका ख्याल है कि मैं आजाद चलूंगा ना तो मैं ज्यादा अच्छी सड़क पार करूंगा। लेकिन बाप अल्लाह ना करे उंगली छोड़ दे और हादसा कोई हो जाए, सारी जिंदगी माफ नहीं करता खुद को। बस जिस तरह इस मेले में बाप की उंगली को पकड़ने वाला मुतमईन है ना, तो इस दुनिया के मेले में अल्लाह के हाथ को अपने हाथ में लेने वाला मुतमईन है। हम वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इस कैफियत को अपनी जिंदगी में ले आए, आप अकेले में भी मुस्कुराएंगे। घबराहट नाम की कोई चीज आपकी जिंदगी में नहीं होगी, चाहे वो आपकी बेटी की बारात के आने का मौका हो या आपके बेटे की कोई ग्रेजुएशन का मौका हो। आप देखिए कि कुछ लोग तो हर वक्त हौलते ही रहते हैं, ये हौल ना समझते हैं, घबराहट, सब कुछ करके भी हौल रहे, ठीक हो जाए, सही नहीं, मेहमान आ रहे, चावल ना गल जाए, ये ना हो जाए। भाई अपने मामले अल्लाह को तो दो। अच्छा मेरा हाल क्या है कि अल्लाह को देते हैं लेकिन अपने हाथ से नहीं छोड़ते, सच्ची जो बात है। मैंने कहूं कि ये रिजवाना ये ग्लास पकड़ी, अब ये पकड़ने लगे ना, पकड़े तो मैं फिर भी ना छोड़ू। आप देखिए क्या हो रहा है, मैं कहूंगी नहीं आप पकड़ लें लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। वल्लाही अमली जिंदगी में हमारा हाल यह है, क्या हम कहते हैं अल्लाह हाफिज, किधर हाफिज है, मैं खुद हाफिज हूँ बच्चे की, सच्ची जो बात है। मैं कहती हूँ मेरा अल्लाह पे बड़ा तवक्कुल है, मैं अपने अल्लाह के ऊपर सारे मामले लगाई हो, तो फिर आप घबरा क्यों रही हैं? फिर मुतमईन हो, चीयर, खुश, जॉय, इंजॉय कीजिए। अल्लाह सुबहान तआला ने इस जिंदगी के सारे मामला अपने हाथ में रखे हुए, एक काम हमें बस दिया, और वो क्या जी बताइए, अमर बिल मारू और नहीं नील बनकर और कोई तवक्कुल, सरेंडर होना। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, सूरह ज़ारियात में आता है, अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुम इस दुनिया में मेरे नुमाइंदे बन के रहो, मैं तुम्हारे काम करूंगा, फिर मिसाल से ही बात समझाती हूँ। आप में से बहुत सारी माएँ भी बैठी हैं और बच्चियाँ भी हैं। जब बच्ची के इम्तिहान के दिन होते हैं तो माँ क्या करती है? बेटा घर के काम छोड़ दो, तुम पढ़ो, कुछ ना करो, मैं करती हूँ। हत्ता कि खाना तक ट्रे में लगा के कमरे में जाता है। इम्तिहानों के जब दिन होते हैं ना तो हमारे प्यारे हमारे हर काम का जिम्मा ले लेते हैं कि हम पकाते हैं, हम खिलाएंगे, तुम पढ़ो। ये होता है ना, सबको पता है, माँ को पता, रात जागती रही, ये वो, जो जो काम नहीं करो तुम पढ़ो। अब आ जाइए इस बात को अपने और आपके मामले पे। सूरत मुल्क की पहली आयतों में अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जो लफ्ज़ है ना, लियब्लुवकुम, मतलब यह कि तुम इस दुनिया के कमरे इम्तिहान में हो। हम सब इस दुनिया में इम्तिहान की पोजीशन में, तो इम्तिहान के चूंकि देना है तो अल्लाह कहते हैं रिस्क मुझे दे दो, मेरे जिम्मे डाल दो। सूरह हूद की पहली आयतें पढ़ लें, बार में पारे की पहली आयत, वमा मिन दाबतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। हर मखलूक, हर क्रिएशन का रिस्क अल्लाह के हाथ में। अल्लाह कहता है तुम इस दुनिया में इम्तिहान के कमरे में हो, जाओ दो शाबाश, तुम इम्तिहान दो, रिस्क तुम्हें मैं दूंगा। हमारा हाल क्या है? हमारे घरों में कमो बेश क्यास करूंगी हालात पे, 1 साल तक का रिस्क मौजूद है। मरेंगे नहीं हम अगर हम कुछ ना और लाएं, कोई हमें ना दे, कहीं सूखे की सूरत में, कहीं पके हुए की सूरत में, कहीं फ्रीजरों की सूरत में, फ्रिजों की सूरत में, ग्रेन्स की सूरत में, हर हाल में देखिए कि हमारे पास रिस्क कितना मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि हमारे पास एसेट्स की सूरत में, कैश एंड क्रॉप या प्रॉपर्टीज की सूरत में, इतना तो मौजूद है हर एक के पास कि एक पैनी भी आज से लेके मरने तक मेरे अकाउंट में ना आए और जो है उसी को लूं। तो आई थिंक सो कि हम में से कोई ऐसा होगा इल्ला माशाल्लाह के जो भूख से मर जाए या उसका घर ना हो। नस्ल दर नस्ल की चीजें हमारे पास मौजूद है लेकिन हवस नहीं जाती, गम फिर भी है, फिक्र है, क्योंकि अपने मामले अल्लाह को नहीं दिए। तो इस रमजान का अगला सबक क्या है? दे दी, यहां बैठे बैठे कह अल्लाह तेरे सुपुर्द, अल्लाह मैंने सब तुझे दिया। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। सूरत अल्लाह में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अल्लाह ताला पे तवक्कुल करेगा अल्लाह उसको काफी हो देगा। आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इस साल के रमजान में हम इंसान पे बात करने वाले हैं, यानी मेरी और आपकी बातें। अल इंसान, क्या क्रिएशन है अल्लाह की, क्या मखलूक है। आप जब देखेंगे वो प्रेजेंटेशन आपको यकीन नहीं आएगा ये मैं खुद हूं। फिर समझ आती है कि अल्लाह ताला ने ये जो दावे किए ना कि लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, ये क्या दावे हैं? हम अपने जिस्म के डीएनए की पिक्चर्स देखते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे जुड़ाव चूड़ियां। हम अपने जिस्म के सेल्स की फॉर्मेशन देखते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे पर्ल्स हैं और कहीं वो ओपल है और कहीं वो रूबी है। इस तरह डायमंड्स की तरह से हमारे जिस्म के अंदर खूबसूरती भरी हुई है, इसके बावजूद हम खुश नहीं है। तो अपने ताल्लुक को मजबूत करना अल्लाह के साथ। अगली चीज पे चलते हैं, मेरा दिल है कि ज्यादा से ज्यादा सबक लेके जाए। एक और तकवा की तारीफ, इब्राहिम बिन आदम का नाम आपने सुना होगा, बहुत नेक बुजुर्ग गुजरे हैं। कहते हैं कि तकवा इस चीज का नाम है कि लोग तेरी जुबान पर कोई ऐब ना पाए, फरिश्ते तेरे जाहिर यानी जाहरी जो अमाल है उनमें कोई ऐब ना देखें और अर्शे अजीम का मालिक तेरे बातिन में कोई ऐब ना देखे। दोहरा देती हूं, क्या है तकवा? कि लोग तेरी जुबान पर कोई ऐब ना पाए, यानी जुबान की हिफाजत। तकवा का एक एंगल क्या है कि बंदे की जुबान दूसरों के ऐप ना खोले। जुबान के ऐप कौन कौन से हैं? 101 लिख लें, सूरह हुजरात ही पढ़ लें। गीबत से लेके, चुगली से लेके, झूठ से लेके, आप तानने, इल्जाम, चीखना, चिल्लाना, दूसरों के बारे में गलत बातें फैलाना, अफवाहें फैलाना, सब जुबान से है। और सिर्फ अगर इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए वो एक मारूफ रिवायत जो मेरे गुमान के मुताबिक आप में से हर सिस्टर ने सुनी होगी एक बार कम से कम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुनाफिक की चार अलामतें, बात करे तो झूठ, झगड़ा हो तो लड़ाई, माल रखा जाए तो खयानत, और चौथी वादा करे तो खिलाफ। चार चीजें हैं ना, जरा गौर कीजिएगा आज इस बात पे। इन चार कामों में से तीन का ताल्लुक जुबान से है। बात करेगा तो जुबान से करेगा ना, झगड़ा करेगा तो जुबान से करेगा ना, वादा करेगा तो जुबान से करेगा। सिर्फ अमानत का एक लफ्ज अलग कर दें तो आप कह सकते हैं कि तीन चौथाई हिस्सा हमारी जुबान का ताल्लुक है। तो हमने जुबान का भी रोजा रखवाना है। बड़े बहुत सारे दर्स हुए हैं इसमें, मुझे भी एक दर्स याद आ रहा है जिसमें रोजे के मुख्तलिफ दर्जे लिखवाए थे मैंने, और उसमें एक दर्जा ये है कि तेरी जुबान का भी रोजा हो। एक होता है आम रोजा, एक होता है खास रोजा, एक होता है खासुल खास रोजा। आम रोजा के एक इंसान अपने जाहरी अमाल की फिक्र करता है कि अच्छे काम कर लूं, टीवी ना देखूं, फिल्म ना देखूं, चलो नमाज पढ़ लूं, ये आम रोजा है, यानी हराम से बचते रहे। खास रोजा क्या होता है कि इंसान अपने आजा की हिफाजत करता है, आंखों से खराब चीज ना देखी, कानों से कुछ ना सुना, यानी जरा स्पेशल नहीं किया। और खासुल खास क्या होता है कि दिल में उठने वाले ख्यालात की भी हिफाजत करता है कि मेरे दिल में भी कोई गंदगी ना आए। तो लिहाजा जुबान के ऐब दूर करेंगे हम रोजों में। लिखे हम सब खुद अपने आप पर, अपने लिए। देखिए जितना मैं खुद को जानती हूं ना, आप मुझे नहीं जानते, हम सब अपने आप को खुद जानते हैं। सूरत कयामत में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, बलिल इंसान वाला नफ्सी ही बसीरा वलो अल्का माजीरा, बल्कि इंसान खुद को खूब जानता है, चाहे दूसरों के सामने कितने उजर रख दे। हमारे अंदर अल्लाह ने एक चौकीदार रखा है, गार्डमैन, जिसका नाम जमीर है। तो मुझे अपने ऐप खुद पता है। ऐसे सिर्फ मदद के लिए कुछ चीजें दोहराते हैं, ऐसे ही एक लिस्ट बनाते हैं, आप भी मेरी मदद करेंगे। ऊंची बोलना ऐब है, चीखना बच्चों के ऊपर, शोहर से शिकवे करना, सास की गीबत करना, नंद को ताना देना, भाभी को उसके मैके का इल्जाम देना, झूठ बोलना, दुकानदार से कल इतने की ली थी, रिक्शे वाले को कहना इतने ही देते हैं हम तो रोज जाते हैं, किसी को ये कहना बस मैं तो आपका ही जिक्र कर रही थी। एक दर्स था ये, बल्कि वेबसाइट पे जो कुरान की किरने का कोर्स है ना, उसमें जो दूसरा ही टॉपिक है मुनाफ़कत का, हमने 101 के करीब झूठ जमा किए थे जो हमारी जुबानें बोलती हैं, और जिसको कह ले कि गुना बेलज़त। ऐसे ऐसे भी झूठ बोल रहे होते हैं जिससे कुछ फायदा भी नहीं हो रहा था। आदतन 1000 बार कहा है तुम्हें, कहा है 100 बार कहा है, शोहर को क्या कहते हैं, सुबह से बैठी नहीं, ठीक है बाकी अभी पहुंची, रश बहुत था बाहर, पता नहीं कि निकली आधा घंटा लेट थे, तो रश अगर 2 मिनट का मिल भी गया तो क्या हुआ। इतनी ये तेज छुरी है वल्लाही कि जो हमारी नेकियों के पलड़ों को काट देगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक मौके पे अपनी जुबान को यूं पकड़े हुए थे, टिप को पकड़ा हुआ था, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पास से गुजरे, कहा कि या अबू बकर ये क्या कर रहे हैं। कहा ये घाटी बड़ी तेज हो गई है, इसको अपने बस में ला रहा हूं। आप सोचिए कि अगर अबू बकर सिद्दीक की जुबान खींचने के काबिल थी तो हमारा क्या हाल है। कितने कमेंट्स देते हैं, बहुत बातें करना के जुबान कैब है, हर वक्त सर जर जर बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। और आज का कल्चर ही बोलने का है, क्योंकि अंदर तो अपनी तारीफें है ना छुपी भी। देखिए ये सेल्फ प्रोजेक्शन जो होती है ना, ये खुद पसंदी का एक नतीजा होती है। प्रोमिनेंट हो जाओ, बड़े बनो, शोर करो, खूब ऊंची बोलो। तो अगर इस साल के रमजान में हम अपनी जुबान को काबू में कर लें, आप अपने लिए लिखें आप रमजान से पहले की अपनी कैफियत, और रमजान के दौरान इंशाल्लाह प्रैक्टिस, और रमजान के बाद हम सब शौरी तौर पे इसकी आदत डालें कि अगर मैंने आपको कोई बात कहनी थी तो मैं, चलिए 1 सेकंड सोचूंगी पहले। आप 1 सेकंड से शुरू करें, एक्टिविटीज आप बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम रमजान में कुछ एक्टिविटी शीट्स भी देंगे कि जिसमें हम अपनी आदत को पुख्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं 1 सेकंड बात बोलूंगी, मिसाल है कि मैंने किसी की गीबत कर दी, अब मेरे पेट में मचल रही है। आप मेरी दोस्त हैं, आप मेरे सामने आ गई तो मैं क्या कहूंगी? खड़ी दे के 1 सेकंड बाद जरा थोड़ा अपना स्टेमिना बढ़ाएं, फिर अगले दिन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4। हर दिन अगर आप 1 सेकंड का इजाफा कर लें तो रमजान के एंड पे हम किसी की गिबत करने से पहले 30 सेकंड सोच रहे होंगे, आधा मिनट। 30 सेकंड के बाद आपको पता है उस सोच का नतीजा क्या निकलेगा? मिट्टी पाओ। रहने दो, मैं नहीं बोलती, आप यकीन करें ये आपको मुजाहिदे करने पड़ेंगे। नजा मन समत, निजात पा गया जो खामोश रहा। करना कि नहीं करना? शोहर से शिकवे छोड़ने? कोई बात नहीं, थोड़ी सी जिंदगी की खूबसूरती कम हो जाएगी। बाज दफा तो शोहर घर में आते हैं तो अल्लाह की बना हम फिर वो सारे दिन का सबर उनपे उंडेलते हैं। कुछ औरतों का ख्याल है कि उनके शोहर प्लम्बर भी हैं, आते वो टूटी लाली को हो रही है। कुछ समझती है मेरा शोहर डॉक्टर है, मेरे सर पे बड़ा दर्द है, आते ही दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। कुछ सोचती है मेरा शोहर वकील है, आते ही उसको बच्चों का मुकदमा सुना दिया। यहाँ वो याद कर लीजिए औरत जिसको उम्मे सलमा कहते हैं, आपने सबने वाकया सुना ही होगा। घर में बच्चे की लाश है और अबू तलखा को दुख नहीं देती कि सारे दिन की खेती बाड़ी से आए, बातें खबर सुना दी बच्चे की मौत की तो खाना छोड़ देंगे। खिलाया पिलाया, बातें की, उनकी ख्वाहिश पूरी की और फजर से पहले कहा कि अगर कोई तुम्हारे पास अपनी अमानत रखे तो वापस लेने आ जाए तो क्या करोगे? कहा शुक्र करूंगा। आप खुद जानते हैं कि किसी की अमानत पड़ी हो तो फिक्र लगाता है, अपनी 10 चीजें हो। कहते हु केयर्स, अल्लाह की हिफाजत, किसी का आप कैसे 1 रुपया पड़ा हो आपकी जान पे बनी होती है। कहा अच्छा, जब तो अमानत को लेने आ जाए तो क्या करेंगे? कहा शुक्र करूंगा, खुशी खुशी दूंगा। तो कहा फिर अपने बेटे पे सब्र करो, अल्लाह ने अपनी अमानत कल वापस ले ली। बेटे बाप ने जब आके पूछा बेटा आप कैसे? कहा पहले से बहुत अच्छा, क्योंकि जो मर गया उसकी इंशाल्लाह खैर ही हुई। इतने परेशान हुए अबू तलहा, अल्लाह की बंदी तूने क्या किया? मैं मैयत पड़ी हुई, उसको नहला तुला के लिटाया हुआ और बीवी शोहर की ख्वाहिश पूरी कर रही है। उनको लगा कि शायद कोई गुनाह की बात हो गई। अल्लाह के नबी के पास गए, अल्लाह के नबी आज तो मेरी बीवी ने हद कर दी, क्या किया ये किया। कहा अबू तलहा मुबारक हो, अल्लाह ने आज की रात तुम्हारे लिए खैर डाल दी है और अल्लाह ने उसी मुलाकात के नतीजे में प्रेग्नेंट किया और एक और बच्चा 9 महीने के बाद आ गया। जो अल्लाह के लिए सबर करेगा अल्लाह उसको दुनिया में भी अजर देगा। बर्दाश्त, खास तौर पे आपने इसका जो इजहार करना है ना वो कब करना है? इफ्तारी की तैयारी में। और जिस दिन आपके घर 25-30 लोग आ रहे हैं, मैंने शोर नहीं मचाना। आप देखिए कि इफ्तारी के वक्त हमारे घरों का अक्सर हाल क्या होता है, डोसा किधर है, शरबत किधर है, खजूरें किधर है, प्लेटें किधर है। हर बंदा एक माशाल्लाह एफिशिएंसी का इजहार कर रहा होता है अपनी जुबान से। फिर इसी तरह अपनी जुबान को हमने कैसे पाक करना है? फालतू बातें नहीं करनी और जिक्र से अपनी जुबान को उतार रखें। ये सिर्फ हम छोटी छोटी टिप्स ले रहे हैं, हर मौजू पे अलग अलग बातें 20 बार आप भी सुन चुके हैं और नहीं सुनी हुई कोई चीज तो आप उसको सुन सकते हैं जाके। लेकिन कंट्रोल करें, आप खुद करेंगे और मैं खुद करूंगी। वमन अहसन قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين। इस आयत पे अमल कीजिए कि सिर्फ बात ज्यादा करनी है ना तो دعا الى الله, दावत الى الله। मोमिन की तो खामोशी भी अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाती है, बात करने की जरूरत है। फिर इसी तरह देखिए कि फरिश्ते तेरे जाहरी आमाल में ऐब ना पाएं। हमने अपने ओपन पोस्चर जाहर की हिफाजत करनी है। सोचिए जरा मेरे जाहर में क्या क्या खराबी है कि नहीं? ये अलग बात है कि जब एक काम हो जाता है कसरत से तो हमें बुरा नहीं लगता, इसका इजहार आज के कल्चर में आपको दिख सकता है। आज वो कपड़े भी बाज दफा हम या हमारी औलादें पहनती हैं जो हमारे ससुर नहीं देख सकते थे। हमारे बाप तो हमें कभी बर्दाश्त ही ना करते कि हम उन कपड़ों में होते जिनमें आज के बाप अपनी बच्चियों को देखते हैं। कल के शोहर तो उन बीवियों को उन कपड़ों में नहीं थे बाहर आने देते जिसमें आज की औरत फिरती है। तो इस तरह आप एक जाहरी अमल की लिस्ट बना लीजिएगा। आप देखिए कि रिश्तों का तकद्दुस तक मिटता जा रहा है और पहन के भी नंगे सब कुछ दिखता है। दिखाने के लिए पहनते हैं, पहले इंसान छुपाने के लिए पहनता था, अब दिखाने के लिए पहनते हैं। इतना बदतर और इतनी रियाकारी आ गई। ظاہری اعمال کو ٹھیک کرنا، اور یہ دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے عمل جو ظاہراً برے ہیں پھر بھی نہ دیکھیں، اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کا تعلق آپ دیکھیے کہاں ہوتا ہے. میں اکثر ایک درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے کہتی ہوں، جیسے ہم سب مسلم ہیں ماشاءاللہ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں نان مسلم ملکوں میں رہنے کا موقع دیا ہے، پھر بھی ہم اسلام پہ. میں اکثر سوچتی ہوں ایئرپورٹس پہ جب ہوتے ہیں نا تو بہت سوچتی ہوں، کیونکہ اس وقت فارغ بھی ہوتا ہے بندہ اور سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. میں سوچتی ہوں کہ ادھر جتنے بھی مسلمز ہیں، یا کسی مال میں کوئی جائے، وہاں جانے کے اتفاق ہی نہیں ہوتا، لیکن جہاں بھی پبلک پلیس پہ جاؤں میں سوچتی ہوں کہ یہ نان مسلم جتنے ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں، کیا ان کو پتہ کہ میں نے آج فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ نہیں پتہ. ان کو پتہ میں روزے سے ہوں کہ نہیں؟ نہیں پتہ. ان کو پتہ میں نے آج کچھ صدقہ دیا ہے؟ نہیں پتہ نا. یعنی ہم بڑی سے بڑی نیکیاں کر لیں یا ہم اندر کھاتے بڑے سے بڑے گناہ کفر تک کے مرتکب ہو جائیں، ان کو نہیں پتہ. ان کو کیا پتہ چلتا ہے ہمارا حال کھلی، جو ہم پہن کے نکلے ہوئے، جو ہمارے حالات ہیں. تو جب لوگوں میں نکلتے ہیں نا تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ اس وقت لوگ مجھے کیا سوچتے ہیں. اور یقین کریں نان مسلمز پہ غصہ نہیں آتا، ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، دعا نکلتی ہے. لیکن جب ہم اپنے مسلمان ان ملکوں میں آ کر اپنے حال حلیے کو اس لیے خراب کرتے ہیں کہ ذرا یہ لوگ ہم سے خوش رہیں، تو آپ نے تقویٰ کی اس تعریف کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تقویٰ کیا ہے، کہ فرشتے تیرے ظاہری اعمال میں کوئی عیب نہ پائیں. اپنے ظاہر کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کے. فاسق کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو کھلم کھلا گناہ کرے اور نہ ڈرے، کہتے ہیں پھر کیا ہو، یہ میرا جسم ہے، میں جس کو مرضی دکھاؤں، اللہ نے حسن بنایا تو دکھاؤ، ہے دیکھنے کی چیز، اسے تو بار بار دیکھ، جس نے بنایا اس نے کہا کہ اس کو چھپاؤ. تو ظاہری اعمال کو دیکھنا ہے. اس پہ آپ ایک چھوٹی سی لسٹ خود جا کے بنا لیں، اپنا محاسبہ خود کریں گے، میرے ظاہری اعمال میں کیا کیا خرابی ہیں. اس میں پہننا اڑنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں اور بہت ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں. اگر ان ملکوں میں رہتے ہوئے ہم صرف اپنے ظاہر کی حفاظت کریں، یقین کریں ہم ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. کل ہم کہیں باہر تھے تو نماز کا وقت ہوا، تو ساتھیوں نے مل کے جماعت سے نماز پڑھی. میں نے سفر کی وجہ سے پہلے سے پڑھ لی ہوئی تھی، تو میں نہیں پڑھ رہی تھی، تو میں دور کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی. ایک بچہ جماعت کرا رہا تھا، باقی مرد بچے اور پیچھے جو بھی عورتیں تھیں یا عورت تھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں دور سے دیکھ رہی تھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ منظر آنکھوں کو کتنا خوبصورت لگ رہا. پاس سے کچھ گورے بھی گزر رہے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے. میں نے کہا یہ تھا وہ منظر جو قرون اولا کے دور میں دکھتا تھا، اور لوگ اس منظر کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. یہ حقیقت ہے. ایک دفعہ ہم صحابہ کرام کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت آ گیا، تو ایک بستی تھی کافروں کی، وہاں پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ مل کے نماز پڑھیں گے. ایک لیڈر اور اس کے پیچھے فالوورز، جو امام کر رہا ہے سب وہی کر رہے ہیں. اتنی ہیبت طاری ہوئی. کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا یہ ہمارے دن میں 5 وقت کا معمول ہے. کہا اچھا، تھوڑی سی بات کی پوری کی پوری بستی مسلمان ہو گئی. یہ ہے ظاہری اعمال کی خوبیاں. اور ہم مسلمان تو وہ تھے کہ ہمارا ایک آیت پہ عمل دشمنوں کو زیر کرتا تھا. ایک جنگ کا موقع تھا، کفار نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمانوں کو ہرائیں، لیکن مسلمان تو جیتے ہی جا رہے ہیں. پھر خفیہ میٹنگ کی، کہا یہ لوگ نہیں ڈریں گے، یہ موت سے نہیں ڈرتے، کیا کریں؟ کہا ایسا کرتے ہیں کہ خوبصورت عورتوں کو، طوائفوں کو بلاتے ہیں اور ان کے سپاہیوں کی طرف مائل کرواتے ہیں کہ لو جاؤ ان کو. اور رومن عورتوں کا حسن بڑا مشہور تھا. اب یہ پلاننگ تھی مسلمانوں کے خلاف کہ جن رستوں سے صحابہ نے گزرنا ہے جنگ کے لیے، وہاں پہ آپ کو کھڑا کر دیا جائے. قصہ مختصر، خبر پھیل پہنچ گئی لیڈر تک بھی. اب انہوں نے کوئی کیوس برپا نہیں کیا. اگلے دن جب جنگ کے لیے نکلنے لگے تو سپاہیوں کو جمع کیا، کہا دیکھو لڑنے جا رہے ہیں نا اللہ کے رستے میں، اور اللہ کے کلام سے ذرا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، برکت ہوگی. اور صرف ایک آیت سورت نور کی پڑھا دی، ایمان والے مردوں کو کہہ دو کہ یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے جائیں، چلو چلو چلتے ہیں چلو. اور وہی ہوا جو کفار کا ٹارگیٹ تھا. ان راستوں میں خوبصورت عورتیں تھیں، लेकिन सहाबा ने या जो भी उस वक्त मुसलमान सिपाही थे नजर उठा के नहीं देखा यहूदियों में नफसारी गुजर के, वो औरतें अपना मुंह देखती रही और मुसलमान जब लड़े तो जीत गए, फतह हो गई। अगले दिन लश्कर के जो अमीर थे उनके पास तवायफों का वो गिरोह आया, कहने लगी ये एक बात तो बताइए, आज तक हमारे फितने से कोई नहीं बचा, आपके सिपाहियों ने हमें देखा भी नहीं, आपने इनकी तरबियत कैसे की है? तरबियत की क्या बात है, बस एक कायद कुरान की पढ़ाई थी उस पर अमल कर लिया होगा इन्होंने, थोड़ी सी बात की वो तवायफों का पूरा गिरोह मुसलमान हो गया था। ये है ज़ाहरी अमाल की खूबी, अपने जवान मर्दों और अपने बेटों की निगाहों की हिफाजत करवाएं। आज लिखिए ये बात, इस रमजान में मैंने अपने 8-9 साल से ऊपर होते हुए बच्चे को सिखाना है कि बेटा जिधर कोई गैर महरम दिखती है या कोई औरत जमा या गुद्दू में नफसारी हो, हमारे बच्चे हमारी आंखों में आंखें डाल के देख रहे होते हैं ना, तभी से सिखाएं। घर में जवान बहने हैं, नजरें झुकाओ, घर में आओ तो खांस के आओ, सारी अमाल की 100 लिस्ट बना ले, आप खुद कर लें, मैं तो सिर्फ आपको सोचना सिखाऊंगी, काम मसल आपने करना। तकवा का अगला दर्जा कि दिल के अंदर जो अमल है ना, बातिन में भी अल्लाह तुम्हारे अंदर कोई खराबी ना देखे, ये वो है जिसको आप कह सकते हैं कि अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा। हम अपने जाहिर को चमका लेते हैं, बातिन कैसे है? इबादात को जाहिर से चिपकाते हैं, यानी इबादात से हमारा जाहिर खूबसूरत है, दिल कीनों से भरा हुआ है, बुगत से भरा हुआ है, हसद से भरा हुआ है। देखिए हमारा हाल क्या कि ड्राइंग रूम को सबसे खूबसूरत करते हैं क्योंकि मेहमानों ने बैठना है, और किचन की पेंट्रियों का हाल क्या क्योंकि खुद ही देख रही है ना, क्लॉजेट्स कैसे हैं, टॉयलेट्स कैसे हैं, अपनी पर्सनल चीजें कैसी हैं, ये कल्चर होता है। जिस तरह हम जाहिर परस्त हो गए ना कि लोगों को दिखाने के लिए चमकाते हैं, इसी तरह हम आमाल में भी वो अमल बड़े भाग भाग के करते हैं जिसमें लोगों से पंप एंड शो मिले, ग्लैमर मिले, और वो दिल जिसमें अल्लाह की याद है, अल्लाह का मुकाम है, उसको हमने गंदगियों से भरा हुआ है। अगर आप में से साथियों ने पिछला दर्स सुना था तो उसमें हमने डिटेल से तकवा की ये बात की थी कि दिल के कीनों को दूर करना है, तो दिल की हिफाजत करें, इस दिल के आईने में रब को से जाना है। कहते हैं कि तकवा ये है कि अपने बातिन को अल्लाह ताला के सामने इस तरह खूबसूरत करके पेश करो जिस तरह अपने जाहिर को मखलूक के सामने मुजय्यन करके पेश करते हो। सोच लीजिए अल्लाह के सामने पेश होना है तो दिल को खूबसूरत करें। इस पे आप एक छोटा सा चेकलिस्ट का स्टाइल बनाएं, मैं सिर्फ आपको सोच के बताती हूँ, एक हम एक्टिविटी करने वाले हैं लेकिन आप अभी कर लें, अगर आप बाद में ना भी कर सकें, और वो क्या है कि आप अपने नोट्स में अभी बैठे बैठे एक दिल की तस्वीर बनाएं। सबको आती है, बच्चे बच्चे को आती है, तीर भी लगा होता है, नीचे खून के कतरे भी गिर रहे होते हैं, है टूटा हुआ दिल भी दिखता, बात बात पे दिल देते फिरते हैं लोगों को, है आप उस दिल के अंदर ऐसे क्यूब्स बनाइए, चकोर खाने नहीं होते, बना लिए आपने, अगर आपका माइंड मैप बनवा दूं, हार्ट और उसके अंदर खाने, ठीक है 12 खाने बना ले, ऐसे कर लें, 4 लाइनें ऐसे बना ले, 3 इधर से बना ले, बन गई सबकी, ठीक है। अब आप मेरी बातों के जवाब में अगर यस है, अगर आप वो काम करते हैं तो उसको वाइट ही छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें, और अगर जो बात कहने लगी वो नहीं करते ना तो उस खाने एक खाने को काला कर लें। बात वाज़े समझ आ गई? चलिए ये बताइए, लिखिए, यानी अपना मुहासबा खुद करना है आपने कि दिल के अंदर के खानों को हमने कैसे करना है। क्या मेरे दिल में ये शौक तो नहीं भरा होता कि लोग मेरी तारीफ करें? अगर भरा होता है तो इस खाने को काला कर लें, और अगर आप लोगों की तारीफ तनकीद से बेनियाज हैं तो इसको सफेद छोड़ दें, या अल्लाह की नजरों में बड़ा होना होता है। एक खाने पे ये कर लीजिए, आगे चलते हैं दूसरे पे। अकेले में जब होती हूं तो क्या करती हूं, क्या किसी और के सामने भी वो काम कर सकती हूं जो अकेले में करती हूं? मिसाल देती हूं ना कि जैसे अकेले में तुम्हारा खाने की स्टाइल बदल जाता है, किसी के सामने कैसे खा रहे होते हैं, यूं चम्मच कांटा नपा तोला, मेहमान जो बैठे और जहां वो बाहर जाते हैं कहते इधर लाओ प्लेटें बोझते हैं। इस तरह के छोटे छोटे सवाल करते जाएं, अगर पीपल कॉन्शियस है ना मखलूक कॉन्शियस है तो सारा दिल काला हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, और अगर अल्लाह कॉन्शियस है, अल्लाह ताला से मोहब्बत है ना, तो फिर आप इंशाअल्लाह ताला अपने दिल को सफेद पाएंगे। तकवा क्या है? अल्लाह इज वॉचिंग मी, अल्लाह मुझे देख रहा है। तो हमने पीपल कॉन्शियस नहीं होना, अल्लाह कॉन्शियस होना है। आखिरी बात करूंगी, फिर हम इस पे यहीं रुकेंगे। और वो क्या कि लोगों की तीन किस्में होती हैं। कुछ होते हैं जो हर वक्त इस फिक्र में होते हैं कि अल्लाह की निगाहों में मेरा क्या मुकाम है, मैं जो करने लगी हूं इस काम को अल्लाह ताला कैसे देखेंगे, पसंद करेंगे कि नहीं, जो बोलने लगी हूं अल्लाह को पसंद है कि नहीं। इसी तरह हर चीज, जहां जाने लगी हूं, जो पहनने लगी हूं, जो खाने लगी हूं, जो कहने लगी हूं, कहना करना बोलना सुनना खाना जाना आना वाना सारे फेल जमा कर लें ग्रामर के, और उसके आगे लिख लें कि जब ये सब कुछ करती हूं तो अल्लाह का ख्याल पहले आता है कि लोगों का। अगर अल्लाह का आता है ना तो मुबारक हो आपको, आप तकवा के आला मुकाम पे। इंशाल्लाह अगले किसी दर्स में तकवा के मर्तबे लिखाऊंगी कि कितने मुख्तलिफ दर्जे हैं। इस तरह कुरान में इंशाल्लाह हम हिदायत के दर्जों पे भी बात करते रहेंगे। 10 दर्जे होते हैं हिदायत के, और तकवा और हिदायत आपस में जुड़े हुए हैं। तकवा नहीं तो हिदायत नहीं, हिदायत नहीं तो तकवा नहीं। क्या बात का खुलासा निकला कि मैंने अपने आप को चेक करना है कि अल्लाह कॉन्शियस हूं। फिर दूसरे दर्जे पे कुछ लोग होते हैं जो पीपल कॉन्शियस होते हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग क्या करते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की नजरों में मैं कैसी हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं कि नहीं, लोग लोग लोग, उनका गम और हम लोग होते हैं। इस तरह से लगता है, इसको लगाइएगा इसमें, लोग हर वक्त उसके दिमाग पे छाए हैं। मसलन लोग क्या कहेंगे, बेटा घर साफ कर लो, मेहमान क्या कहेंगे, ये पहन के जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे, ये खाने में एक खाना पकाया लोग क्या कहेंगे, शादी में जा रही हूं और इस हाल हुलिये में लोग क्या कहेंगे, पीसी की शादी और अबाये में जाऊंगी कैसे, लोग 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 लोग। तो तकवा पीपल कॉन्शियस होना नहीं है, अल्लाह कॉन्शियस होना है। एक इंसान जब लोगों की नजरों में सजने से ज्यादा अल्लाह ताला की निगाहों में सजना चाहता है, यही तकवा है। एक तीसरा दर्जा होता है लोगों का, और वो होते हैं सेल्फ प्लीजर। उनको ना तो अल्लाह की फिक्र है परवाह, और ना सच्ची बात है उनको लोगों की परवाह। वो सड़कों पे खड़े गंदे काम करते हुए दिखते हैं, वो फटे हुए कपड़े पहन के निकल जाते हैं, वो शराब के नशों में धोते हैं, ये क्रिमिनल्स होते हैं। ये बहुत तफसील से हमने एक लेक्चर में किया हुआ है कि अल्लाह ने खरीद ली मोमिनों से उनकी जाने और माल। तो दुआ करते हैं कि इस साल का रमजान हमें अल्लाह से जोड़ दे। अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत आ गई ना, और हम सबसे बेनियाज होके अल्लाह के हो गए, तो याद रखिए ये रमजान हमारा सक्सेसफुल हो गया। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जो भी अल्लाह सुबहान ताला ने हमारे लिए रखा है, किस तरह से क्या किया है, इस सारे को हमने अपने दिल में से जाना। आप देखिए कि जब हमारी अल्लाह ताला से बातें होती है ना, तो फिर इंसान इसकी परवाह नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इस साल हम अगर अपने रमजान को अपने दिल का रमजान बना लेना, दिल को सजाना है, दिल के आईने को सजाना है। सारी कायनात इंसान के लिए और इंसान रब के लिए, और जो चीज रब को पेश करनी है वो कैसी होगी। मैं छोटी सी आपको मिसाल दूंगी कि कोई तोहफा अगर आपने किसी को पेश करना हो, कैसा रखते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, खूबसूरत तरीके से रखते हैं ना। टूटी हुई चीज कभी किसी को दी, फटी हुई चीज दी, अधूरी चीज दी, तो फिर दिल अधूरा कैसे देंगे, टूटा हुआ दिल कैसे देंगे। इल्ला मनतल्लाह बिकल्बिन सलीम, सलामत दिल लेकर अल्लाह के पास जाना, और यही तकवा है, बचा बचा के रखना है, इसको जाया नहीं होने देना, इसको खराब नहीं होने देना, मखलूक के आगे रुस्वा नहीं करना। अल्लाह को जो चीज देनी है उसको बचाएं। कभी आप कोई चीज पहले से बना के रख लें मेहमानों के आने से पहले, तो गम लगा होता है बच्चे ही ना ये स्वीट डिश छेड़ दें, और मियां बेचारे ने छेड़ा तो हम ही छिड़ जाएंगे। मेहमानों के आगे रखना होता है ना, सफाई कर ले हम घर की, तो मर्दों की जान पे बनी होती है। इधर ना खड़े, इधर पाँव ना रखे, सर पे ही रख ले पाँव, मैंने सफाई कर दी है। तो जब लोगों के लिए हम इतने फिक्रमंद हैं, तो अल्लाह के लिए कैसे नहीं होना। तो इंशाल्लाह ये जो रमजान आ रहा है ना, हम सबको ऐसे ही सिखा रहा होगा, यही इसका पैगाम है। आप सबके पास, मैंने आज बाहर भी आते हुए पढ़ा के, यहाँ दौरे कुरान हो रहा है, हो रहा है इधर, आज नहीं हुआ, कल से शुरू होगा, आज नहीं किया। चलिए अल्लाह ताला आपके इस वक्त में बरकत दे। देखिए आप सब यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी से करें जो भी कर रहे हैं, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आप यहाँ आने के बाद, या आप कितने बजे आते हैं इधर, 10 से 12, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि हमारे पास ऑनलाइन पे भी दौरे कुरान होते हैं, और इस साल हम लोग लंदन से कर रहे हैं। उस हर साल दौरे कुरान का थीम फर्क होता है। एक होता है दौरे कुरान का तर्जुमा, 2 घंटे इज मोर देन एनफ, 1.5 2 घंटे, 1.5 घंटे में रवान तर्जुमा बंदा पढ़ लेता है, आधे घंटे में थोड़ी सी बातें जो सेल्फ एनालिसिस की होती हैं, 2 घंटे। हर साल थोड़ा सा फीलिंग आती है कि कुछ लोग बेचारे सिर्फ रमजान ही के रमजान कुरान सुनते हैं, पूरा साल उनका बिजी स्केड्यूल होता है। तो ये अल्लाह ताला ने बात पिछले 4-5 साल से डाली हुई है कि हर साल मैं हमेशा अपने दौरे कुरान में ये सोचती हूँ कि कोई एक ऐसी सिस्टर है मेरे साथ सुनने वालों में कि जो फर्स्ट टाइम सुन रही है, और शायद रमजान के बाद उनको अगले रमजान तक फिर मौका नहीं मिलता। तो ख्वाहिश क्या होती है कि कोई एक सोच दे के भेजे, ताकि लोग सुनने के बाद अपने आप को उसके साथ जोड़ सकें। तो मुख्तलिफ दौरे कुरान होते हैं, जिसमें पिछले साल मसलन अगर आप में से कुछ साथियों ने किया, तो इस्लाम ए टू जी था, कि इस्लाम की जो चीज़ें पहले करनी चाहिए अमल में उसको पहले रखा। जैसे शुरू के 5 पारों पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे पे बात की, फिर अगले 5 के अराउंड हमारा गोल था कि सुन रसालत पे बात होनी है, आखरत पे, और होते होते छोटी चीज़ें, क्योंकि तरतीब बदलती है। तो इस साल जो दौरे कुरान होगा, उसका थीम क्या है, अल इंसान, इंसान ए टू जी। अल्लाह ने हमें कैसा बनाया, किस एंगल से बनाया, और इंसान जो है ना अपनी जात में एक बहुत बड़ी कायनात है। इंशाल्लाह इसमें हम स्पिरिचुअल और फिजिकल बीइंग, इंसान को अल्लाह ने किन जिस्म और रूह का ताल्लुक, फिर रूह किन चीज़ों से ख़राब होती है, और दिस एंड दैट, और साथ ही साथ आप ह्यूमन बीइंग को अंदर से पूरा देखेंगे, जिस्म के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम कैसे काम करें। खास तौर पे इस साल मुझे लगता है कि जो बच्चे बच्चियां घरों में हैं समर के दौरान, उनके लिए ये एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। तो अगर आप सुनना चाहें तो आप लोग ऑनलाइन से सुन सकते हैं, डिटेल्स चाहिए तो आपको बाद में बताई भी जा सकती हैं, और अगर आपको किसी को पता है तो एक दूसरे से शेयर करें। सारा दिन चलेगा, आप सुबह इधर सुन रहे हैं तो शाम का कोई सुन ले रिप्ले, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो 11 से 2 के। अगर आप लोग यहाँ 10 से 12 फारिग होके अगले 2 घंटे का सुन लें, और जो शुरू का पारा मिस हो वो उसके फौरन पर रिप्ले भी शुरू हो जाएगा। यानी कोशिश कीजिए कि इसको डिफरेंट एंगल से सुने, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दौरे कुरान के बाद दिल खुल अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई बात और इधर के नाते से कुछ सवाल, कोई और क्वेश्चन भी है, क्योंकि मेरा ख्याल है 12:30 का टाइम तक टाइम था ना हमारे पास। जी राहत जी, आप बताइए। जी सिस्टर जी, लंदन में एबे मैनर हॉल है, वेम्बले में हो रहा है। उस एबे मैनर आपके फ्लैट लाए हैं साथ, कोई कहीं कुछ इनको दिया हुआ कि नहीं? जी सिस्टर, जी सिस्टर, हमारे पास कब टाइम कितना, नमाज कित है? अच्छा नमाज लेट है, मुझे खौफ था कि अभी अजान का वक्त हो रहा है। तो एबे आप में से किसी के कुरे, आप खुद सब आ सकते हैं मैं लंदन 1 महीने के लिए रखवा करवा ले, वहाँ कोई बड़ा सा घर ये तो फिर बहुत ही बढ़िया आजमाइश है लंदन वालों की। बहुत अच्छा हॉल है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस साल उसको चुना है। लेकिन हमारे पास एक उस हॉल और दूसरा मैनचेस्टर में डिट्सबरी मॉस्क है, अगर आप लोगों ने नाम सुना है, डिट्सबरी कहते हैं क्या कहते हैं, तो वहां पे भी हम लोगों ने सेटअप इस तरह से किया है कि जो वहां का लाइव प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हम स्काइप के थ्रू भी और बाकी जिस तरह से भी ले सके, तो वहाँ पे सिस्टर रिजवाना और दूसरे लोग मिलके हेल्प करेंगे। तो अगर आप लोग सिर्फ मैनचेस्टर तक आ जाएं तो भी ठीक है, रोज़ नहीं आ सकते, बीच में कोई दिन निकाल के आ जाएं, एक दफ़ा लंदन आ जाएं, मैं फिर इसमें इंशाल्लाह ये होगा कि अल्लाह ने चाहा अगर तो मैनचेस्टर में भी 1-2 दिन हम करेंगे वीकेंड्स पे, वो सब पहले से हम सारा अनाउंस करेंगे। कल परसों 6 से हमारा वेलकम रमजान शुरू हो रहा, अगर 6 को आप कुछ नहीं कर रहे कमिंग सैटरडे को पेलटॉक पे आ जाएं, आपको दिखते ही मेरे लिए मोस्टली लोग का फेमिलियर है ना, कितने लोग हैं जो पेल टॉक को जानते हैं, वो हाथ खड़ा करें? एक भी नहीं है। सुभान अल्लाह। एक है, दो है। देखिए राहत, अल्लाह के नबी ने कहा कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, वो दूसरों के लिए भी करे। देखिए यहाँ आके तो हम सुनते हैं ना, पेन टॉप पे हमारे घर वाले सुनते हैं। लगाए अपने सुनने के बहाने और सुनाए मियाओं को, और ये ना कि आपके लिए लगा रही हैं, बल्कि इधर आने से पहले सुबह 10 बजे चिल्लाए आपके रूम में चला, घर में कोई बहू होगी, बेटी होगी, जो आप नहीं कह सकते वो अल्लाह की किताब कह देती है। ठीक है, तो आपको इसके लिए ये है कि अगर वेबसाइट का नाम nurulquran.com है, अगर आप में से किसी को याद रहे तो लिख लें NURULQURAN.com। आप उस पर पहुंच गए तो आप बहुत जगह जाएंगे, क्योंकि यहाँ नेट नहीं है, और वैसे तो मेरे कंप्यूटर में होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज यहाँ नेट की वजह से वो दिख नहीं रहा, हमारा पीछे हो गया, थोड़ा रीबूट हो गया, लेकिन कुछ चीजें हैं। अगर इसकी स्क्रीन को जरा कोई करे, आप में से किसने इसको सेट किया हुआ है, अगर आता थोड़ा सा आपकी हेल्प करने के नाते कि हम इस वक्त का व्यक्ति नहीं। जी ये दौरे कुरान का फ्लायर आ गया, इसके लाइट को थोड़ा सा बंद करें। इस जी अभी आया था, तस्वीर आई थी अभी, इसको छेड़े नहीं, ये लाइट रूम की बेशक बंद कर दें, अब तो इसकी जरूरत नहीं है। इसको आपने रिबूट के अभी पॉज पे चला गया, इसको एक तो हल्का सा क्लिक करके छोड़ दें, हल्का सा बस। आप देखिए कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई है माशाल्लाह, कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आपके घर वाले भी इस नेमत से रह सकते हैं। आप लोग जब यहाँ आके कुरान सीखते हैं माशाल्लाह, तो आपका दिल चाहता है ना कि आपके घर वाले भी सुने, तो सारे तो इधर नहीं आते होंगे ना, आ भी नहीं सकते, मर तो नहीं आते। तो आज के दौर में जो अल्लाह की नेमतों ने हमें दिया हुआ है, उसके नाते अल्लाह की जो नेमतें हमारे पास है उसका फ़ायदा उठाइए। फ़ोन घरों में, स्काइप से मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा नहीं जानता, स्काइप पर भी आता, फोन पे भी आता, और भी लोग करते हैं दौरे कुरान, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हम अपनी ही देंगे ना आपको, औरों की कहीं मिलती है, किसी का भी सुन लें, लेकिन सुने, देखे कि ये किताब आपके दिल को कैसे, ये जो ब्लिंक कर रहा है ना सिस्टर, कोई एक बच्ची इसमें दे, इसको हल्का सा करके छोड़ दें। अच्छा वो रिबूट हो गया ना असल में, तो इसमें ये कि आप लोग घर में अगर सुनना चाहेंगे तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन सारी मौजूद है, सुन लीजिए। और दूसरी बात ये होगी कि जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसके होने तक, कोई सवाल, कोई बात, कोई जनरल जी पूछ लें कि नेल पॉलिश से नमाज होती है कि नहीं, ताकि 101 दफा पूरा हो जाए, हराम हलाल के कुछ सवाल पूछ लें। जी जी अच्छा जी आपका एक का सवाल है कि बदगुमानी कितनी कर सकते हैं या बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे आपके इस सवाल से ऐसे लगा कि खाने में कितना नमक डाल सकते हैं, कुछ तो डालना ही पड़ेगा ना, नमक के बगैर पुलाव तो नहीं पकता। मैं तो अपना मुझे ना इसमें ले, मुझे तो किसी से बदगुमानी नहीं है। देखिए कि जब आप अल्लाह पर राजी होते हैं ना, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि आप अल्लाह के बंदों से भी राजी हो जाते हैं। वो एक औरत थी ना, आपकी इस बात के जवाब में सुना रही हूँ कि एक औरत थी, तो वो सबको अच्छा कहती थी, सारे ही अच्छे हैं, फलां कितना अच्छा वो। तो एक दिन किसी ने उसको डांटा कि अम्मा तुम हर एक को अच्छा कहती हो, एक दिन तुम शैतान को भी अच्छा कहोगी। तो कहती होर की, अल्लाह ने जेड़ा काम ओदे जिम्मे लाया किड्डा सोना कर रहे हैं। तो बदगुमानी जो है ना, असल में मैं इसको यूं लेती हूँ, ये आप कहते हैं ना होती है या होगी, ह्यूमन बींग है हम, हमारे दिलों में अगर कोई चीज आती है ना, घर गंदा होता है, साफ करते रहे, जिसके लिए बदगुमानी आए सबसे पहले जाके उससे कम्युनिकेशन कर लें। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। शैतान वसवसा डालता है, फिर बदगुमान करता है, और उस बदगुमानी के नतीजे में हमसे दूसरों के ताल्लुकात खराब कराता है। मुझे अपनी एक उस्ताद थी बहुत प्यारी, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दे, अभी भी जिंदा, सुमैया बच उनका नाम था, तो उनकी बात याद आती है, कहती थी बाहर जाते हैं ना तो पाँव पे पट्टी पड़ी जाती है, थोड़ा और चलो उतर जाएगी। ये बदगुमानी, जहां दो बर्तन है वो खटकेंगे, बातें होंगी, माँ बेटी के बीच में बदगुमानी आ जाती है, बहन बहन कहती है करें क्या, चलते जाए, कम्युनिकेशन कर लो। मियाँ को बता दें मेरे दिल में आपके लिए बात आ गई है, यकीन करें आप उस बंदे को तोहफा दें, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए सोचें कि उसने ऐसा नहीं किया। एक इमाम का कौल है कि तुम्हें किसी के बारे में कोई ख्याल आए कि उसने ये गलत काम किया, तो उसके 99 उजर ढूंढो। नहीं ये मिसाल दे रही हूँ मैं, सिर्फ एक मिसाल देने के लिए कि आपने किसी सिस्टर को इन्वाइट किया कि आज के इस दर्स में आए, आपके ख्याल में वो बड़ी मॉडर्न थी और आपने फिर भी दावत दी और आपको अभी तक वो नहीं दिखी। एक सूरत आना ही नहीं था, मुझे पहले ही पता था ये नहीं आते, इन्होंने कहा आना है, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। एक सूरत जी होती है जो मुमन हमारी होती है, मेहमान ही आने वाले, हम कहते देखा आई नहीं कभी, वक्त पे आई नहीं, आते नहीं। दूसरी सूरत है कोई नहीं निकली होगी घर से, अल्लाह खैर करे एक्सीडेंट ना हो गया हो, ट्रैफिक में ना फंस गई हो, बीमार ना हो, उसका बच्चा ना बीमार हो, उसके मियाँ को ना कुछ हो। 99 थिंग सोचते हैं ये और कहते हैं कि फिर भी ना हो तो फिर एक आखिरी सौवीं बात सोच लो उसके बारे में कि वो उजर है उसका जिस तक मैं नहीं पहुंच पा रही। दिल के आईने को सजा के रखें। मैं कहती हूं कि जितना दीनदारों के दिलों में आपस में बदगुमानियां शैतान डालता है उतनी तो दुनियादारों के भी नहीं डालता। वो लोग जो एक दूसरे से मोहब्बतें करते प्यार करते लोग उनके नामों पे बदगुमान है, गिरोही तासुब, इतनी अजीबोगरीब बातें आपको बाहर दिखेंगी कि आप हैरान होंगे। मैं एक पढ़ रही थी, बल्कि मैंने एक दिन दर्स में इन्हीं दिनों में शेयर भी किया कि चार आइमा कराम थे ना, इमाम शाफी, इमाम अहमद और इमाम मालिक और इसी तरह से इमाम चौथे कौन थे, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह थे ना, ये एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द थे। आपको तक इनमें से एक इमाम दूसरे इमाम के फौत होने पे रो रो के नाबीना हो गए थे कि मेरा उस्ताद दुनिया से चला गया। आज उम्मत उन्हीं इमामों के नाम पे चार ग्रोहों में बनी हुई है। तो दीन की रूह नहीं आएगी जब तक आपका दिल साफ नहीं होगा। फौरन कह दीजिए मुझे कुछ हो रहा है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल आपकी सवाल के जवाब में टिप देना चाहती हूँ। बस आप देखिए कि सास बहू घर में रहते हैं ना, आ जाती है बदगुमानी, सास के भी दिल में आएगी बहू के भी, आप क्या करें? मैं एक प्रैक्टिकल किसी की एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगी। सास जो है ना, उन्होंने जैसे आदत होती है माओं की कोई ऐसी बात कह दी कि जैसे लगा कि तू मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखती, या ये तो बेचारा भूखा रहता है, तुम्हें तो अपने ही कामों की फुर्सत नहीं है। अब ये जुमला सास ने बोला, बहू वहां मौजूद थी। एक सूरत ये है कि बा ये जुमला सुन के वो जाके मियाँ को सुनाए, आपकी सास माँ ने मुझे ये ताना दिया, माँ को अपनी सुना दे, बहनों को सुनाए। उसने बता क्या किया, अपनी सास का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में ज़रा दिल दुखा हुआ था, आंसू आ गए, कहेंगे अम्मी आपकी इस वजह से मेरा दिल बड़ा दुख है। यकीन करें उसने इस तरह बात की कि सास कांप गई। नहीं नहीं मुझे पता है वो भी नहीं ध्यान करता खाने का, तू तो उसकी फिक्र करती है। 2 मिनट में मामला सेट हो गया। जिस बंदे से आपका दिल बदगुमान है ना, जाके उसके गले लग के कहेंगे मुझे आपसे मोहब्बत बहुत है लेकिन मेरे दिल में कुछ बात आ रही है, आए बैठ के बातें कर लेते हैं। जी सिस्टर,
मेरी माशाल्लाह 3 बहू है ना, तो कभी कभी मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ तो कभी सोचती हूँ कि शायद मुझे इग्नोर कर रही है ना, तो मैं फौरन फोन उठाती हूँ, पहले सुबह सबसे पहले उन्हें दुआ सलाम कर लेती हूँ
माफी के साथ। लेकिन आप देखिए कि अमूमन मैंने देखा है शादी के जब वो चाव खत्म हो जाते हैं, जोड़े सारे ठंडे हो गए, जेवर ठीक हो गया, तो फिर सास अब बहू को यूं देखती है जैसे माइक्रोस्कोप में देखना होता है, वो जैसे मूसा के कौम ने गाय को देखा था ना, चलती कैसे है। अब सबसे बड़ा मसला मैंने जो देखा है ना, वो ये होता है कि बहू देर से उठती है, तो सास साहबा को एक तो शुगर की वजह से नींद नहीं पड़ती, दूसरा बाथरूम में जाना पड़ता है बार वो 6-7 बजे उठ के। अब बहू बेचारी आप उसके तकाजे तो देखे ना, पता नहीं पूरी सो भी पाती है रात को कि नहीं। अब अगर वो 9 बजे उठती है तो अब एक तो है सास का पारा चढ़ा हुआ, आ ले बस ये उठती नहीं, मैं नाश्ता उठ भी किया, फायदा क्या बहू लाने का। और बात सोचते हैं बहू विदाउट पे मुलाजमा आ रही है, मुन्ने के अब आप शादी कर लो बच्चे की, मेरे से काम नहीं होता। यदि अब एक ऐसी मुलाजमा आ जाए कि जिस जो हमें छुट्टी भी नहीं देगी या छुट्टी भी नहीं लेगी। अब आप सोचें आप बहू हैं और आपकी सास आपके बारे में बिगड़ी हुई है, गुस्से में, ये होगा वो होगा, या आपको पता चल जाता है कि आपकी सास आपसे बहुत गुस्से में, क्या करें? कमरे से उतरती सास बहू, अस्सलाम वालेकुम, जाके सास के गले लग गए, अम्मी क्या हाल है? सच बताइए वो सास के ताने तूने रहेंगे बाकी? जिसको लगे। एक सिस्टर थी तो उन्होंने एक मौके पे कहा कि मुझे पता चला कि मेरी सास मेरे घर आ रही है बड़े गुस्से में, बस आज क्या तोड़फोड़ हो जाएगी वो अल्लाह भी भला। होते खानदानी बहुत सारे मसले मसाइल लोगों के साथ। खैर क्या किया करना, क्या मेरी सोच में बात की कि मुझे लग रहा है कि बस सब पता नहीं आज क्या होना। मैंने कहा पता क्या करें, जूं ही आपकी सास बाहर आए दरवाजा खुले, आप ओस अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान क्या हाल है। मैं तो जो भी उनका स्टाइल था मैंने उनको बताया कि आप उनको वार्म वेलकम करें, गले लगे और उन्हें के इधर आए बैठे इधर, और बच्चों को कहे दादी के पांव दबाए। कहती ये नहीं हो सकता, वो कांप रही थी जैसे खौफ आता है। मैंने कहा आप इस वक्त अगर अपने जज्बात पे काबू पा के अपनी सास को एक स्माइल वाला वेलकम दे दें तो आप देखें क्या होता है। यकीन करें जो उसकी बात में रिपोर्ट मिली, सास कुछ कर ही नहीं सकी। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी को प्यार से स्माइल दे रहे हैं, आप फूल पेश कर रहे हैं और वो पत्थर मारे, नहीं होगा। खेल विद काइंडनेस इदफा बिल नतीजा अहसन, ये रमजान सिखाता है। ये भी एक तकवा है कि बुराई के जवाब में भलाई करो। वो कांटे फूल फेंक वो पत्थर फेंकते हैं, आप फूल फेंक दीजिए। तो हमेशा ये सोचें कि जब मैं बदगुमानियां करूंगी तो मेरी नेकियां जाया होंगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका दिल खराब नहीं होगा। ये फ्लायर, और इस साल हम चूंकि इंसान पे बात करने वाले हैं तो ये सारे इश्यूज आएंगे। हर पारे का एक थीम है और हर थीम के साथ चलते हैं। ये देखिए आप, ये वेलकम रमजान जो हमारा ये 6 जुलाई को, कब है ये, परसों शायद, सैटरडे, कमिंग सैटरडे। ये असल में फ्लायर जो आपके सामने ना, ये नॉर्वे का है लेकिन यहाँ का जो टाइम है वो 11 बजे से 2 बजे है। ये एबे मैनर हॉल है उधर वेम्बले में, उसका भी अगर इधर मिल जाए तो मैं दिखा देती हूँ आपको। है इधर खैर खुल नहीं सकता ना इस वक्त नेट में। तो बहरहाल ये देखिए अल इंसान, ये DNA की तस्वीर है, बल्कि मैं कोशिश करती हूँ अगर कोई वीडियो इधर हो तो आपको दिखाऊं कि हम इस तरह से अल्लाह सुबहान तआला की एक मखलूक का बने हैं, मखलूक कि अल्लाह तआला ने हमारे लिए इतना कुछ रखा हुआ है लेकिन हम उस पर गौर कम करते हैं, बहुत थोड़ा हम सोचते हैं और हमें ये पता भी नहीं कि अल्लाह ताला हमसे चाहता क्या है। बाज दफा हम अल्लाह ताला की कुदरतों का इस तरह से इनकार करते हैं कि हम अपने बारे में गौर फिक्र ही नहीं करते, तवज्जो ही नहीं देते। मसलन अगर ये एक वीडियो चलती है, असल वही बात है कि आपके नसीब में तो चलेगी और जब चलेगी तभी होगी। हम क्या कहते हैं, रदीत बिल्लाहि रब्बन, अल्लाह की रजा पे राजी रहना है ना, तो इंशाल्लाह ये सारे काम हमारे लिए आसान हो जाएंगे। और अगर नहीं तो फिर आप देखिए कि बड़े से बड़े काम भी करके ना आप खुश नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने आपसे अगर कोई काम लेना है तो वो लेगा। बल्कि मैं पिछले चंद दिन पहले, शायद 2-3 वीक हो गए, जर्मनी में एक ट्रिप था, तो मैं जब नॉर्वे से वहां गई और जाहिर है कि वहां भी वेलकम रमजान था, तो मैंने उनको बताया कि हम लोग रमजान का एक प्रोग्राम कर रहे हैं। कितनी फैमिली सिर्फ इस बात पे तैयार हो गई कि हम रमजान सिर्फ आके आपके उस नॉर्वे में गुजार सकते हैं, बच्चों की छुट्टियां भी हैं, ये है वो दिस एंड दैट। तो फिर जाहिर है मुझे उनको बताना पड़ा कि मैं नॉर्वे से नहीं कर रही लेकिन लंदन हूँ। तो उसके बाद कई लोग तैयार थे कि लंदन में हमारे लिए कुछ अरेंज करें तो हम वहां आ जाएं और वहां सुने, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है कि अगर हमने इसको जाया कर दिया तो फिर उसके बाद हमारे लिए बाद में मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग अगर इसका भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं किसी भी तरह, कहां जाए, इधर जहां भी हो रहा है, मैं बार बार आपको ये कहूंगी कि आप मेरी बात ना सुने, जिसकी आपको समझ आती है। हो सकता है मेरी बात आपको वैसे ही बड़ी मुश्किल लग रही हो, समझ ही ना आ रही हो, तो किसी की आसान बात है, किसी को मेरी बात गुस्से वाली लग सकती है, तो आप किसी नरम बात को सुन लें। लेकिन कुछ ना कुछ नियत जरूर कि मैंने इंशाल्लाह इस रमजान में एक दफा अल्लाह के कलाम से गुजरना है। और अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट से आप फायदा उठाते हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसके नतीजे में आपको कितना फायदा होगा। मसलन आप देखिए कि ये एक फ्लायर है, ये इन्होंने बनाया हुआ नॉर्वे में। आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखाती हूँ कि ये क्या चीज है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं और आप इसको लेके सोचिए कि हम क्या है। ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है इस वक्त, ये क्या है, कोई बता सकता है आप में से? DNA क्या होता है? ये आपको पता है ये क्या चीज है? अब देखने में एकदम क्या लगता है, मोतियों वाली चूड़ियां, लेकिन ये मैं और आप है। ये उस फ्लायर का बैकग्राउंड है जो हमारा नॉर्वे में नोश्क में भी 40 साल हो रहा है। अब आप सोचें कि आप अंदर से ऐसी हैं और आपने कभी गौर भी नहीं किया, तो आप महरूम है ना अल्लाह की नेमतों पे, कुदरतों पे गौर करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए कितना कुछ करता है और हम क्या करते हैं। मैं आजकल चूंकि इसकी तैयारी में हूँ, तो मैं जब जितना इंसान की बॉडी के बारे में अंदर से देखती पढ़ती, तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला तूने तो हमें इतने प्यार से बनाया, लेकिन हम क्या, इतने ना शुक्र, इतने ना फरमान, तेरी बातों को हम समझते नहीं। ये देखिए, ये एक और है, ये सारा कुछ आपको मैं सिर्फ अभी जो दिखा रही हूँ इसमें और चीजें ऐड होंगी और हम इंशाल्लाह रमजान में ये सब करेंगे। ये देखिए, इंसान कहाँ से आता है, एम्ब्रियोलॉजी क्या, माँ के पेट में बच्चे के मराहिल, कुरान ने क्या बताया और आज साइंस किस तरह बताती है, इसमें ये पूरे वो सारे मिथ्स हैं कि जो इस्लाम के नजरियात से मैच करते हैं, लेकिन दुनिया को कब पता चला कि ये सब कुछ कैसे होगा। ये देखिए इधर, ये इंसान की वो कैफियत है। मुझे इसको सुनते ही देखते ही याद आ जाता है सूरह दहर की पहली आयत, हल ताल अल इंसान ही नुमिना दहरी लम यकुन शय मस्कूरा। क्या इंसान पर जमाने का वो वक्त नहीं गुजरा कि वो कोई काबिले जिक्र चीज नहीं था। हम क्या थे, पानी का एक कतरा, और आज कैसे लड़ते हैं, कैसे बड़े होते हैं। अल्लाह ताला कहता है तीन पर्दों में तुम्हें मैंने मांग के रखा और वहां से बच्चा निकलता है। ये देखिए माँ के पर्द, पेट के तीन अंधेरे, पेट की वॉल, यूट्रस की वॉल, बच्चे के इर्द गिर्द की झिल्ली। ये देखिए डिलीवरी का जो वक्त है, कौन इस बच्चे को सिखाता है कि अब तुमने अपनी पोजीशन को बदलना है और उसके बाद तुमने अब इस दुनिया में आना है। ये इंसान के जिस्म की एक कैफियत है जिसको अल्लाह ताला कहते हैं अलका, अलका लीच को कहते हैं, जोंक। ये बच्चे की कैफियत और जोंक, देखिए नीचे लीच है, ऊपर ह्यूमन बींग एम्ब्रियो। क्या ये चीजें हमें अल्लाह के बारे में सोचना नहीं सिखाती। ये देखिए लाइफ साइकिल है पूरा उसका। ये देखिए बच्चा, ये बच्चे की जिस्म की मुख्तलिफ चीजें अभी भी दिख रही हैं, ये जो आपको एरोस दिख रहे हैं ना, बच्चे का दिल, आंखें, कान है, किसने बनाया और कौन बना रहा है, और हम कभी सोचते ही नहीं। इस तरह की बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह हम इस साल साथ शेयर करेंगे। फिर ये जो अल्लाह इंसान की जो जिस्म की मट्टी की हालतें हैं उसकी कैफियत है। तो सिर्फ दिखाने का मकसद ये क्या है कि इंसान जब अपने बारे में भी गौर व फिक्र करता है तो उसको अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है। गौर व फिक्र करना आदत बना लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह का कुर मिलेगा। आदत बनाए, बच्चे को अपने देखें तो कहें कि अल्लाह ताला ये बच्चा कैसे बना, तूने कैसे किया, ये तेरी वजह से, तेरे मामलात में हुआ। और इस तरह से आप देखें कि जब हम अल्लाह सुबहान तआला की कायनात पे गौर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें एक वक्त आएगा सोचना अच्छा लगेगा ना। तो कल तक अगर मैं आपको दावत देती कि आप नॉर्वे आए, तो आप में से बहुत सारों के पास वीजे का मसला था और अब यहाँ लोकल है। एक दफा अगर आप चाहें कोई एक दिन आ जाए, 6 को आ जाइए, 7 को आ जाए, मिल के आ जाएं, कुछ फैमिलीज अपना प्लान बना लीजिए। लेकिन मुझे भी अच्छा लगेगा कि जब मैं उधर से उन लोगों को छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा मरहला था कि नॉर्वे वालों को छोड़ के इतने करीब होते हुए मैं इधर आऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये अल्लाह के बंदों की बातें हैं। अल्लाह, हम अपने घरों से, जगहों से ही अगर सिर्फ प्यार करते रहेंगे तो फिर इसी में रहेंगे। तो आप लोग आइए, अच्छा लगेगा। कोई बात जी, आपको नॉर्वे का स्कूल दिखाऊं, 3 मिनट की वीडियो है, क्योंकि कुछ लोग बच्चियों को भेजते हैं। हमारे पास रमजान के बाद सुबह इस्लाम 1 साल का कोर्स भी शुरू हो रहा है, अगर आप अपनी बच्चियों को या खुद आना चाहें तो माशाल्लाह वहाँ रिहाइश का इंतजाम मौजूद है।
والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ تعالى الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ
كيف لگا آپ کو آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت ہے نا تو ہمارے پاس ایک سال کا کورس ہوتا ہے جیسے آپ فل ٹائم بچے کہیں نہ کہیں پڑھنے جاتے ہیں تو یہاں بھی آپ رہتے ہیں تو جب تک فلی کوئی چیز نہ ہو اس وقت تک آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو موسٹ ویلکم آپ لوگ اگر کیونکہ ہمارا یہ کورس رمضان سے شروع ہوتا ہے اور رمضان تک پورا ہوگا اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ بہت بگ چینجز آتے ہیں ابھی ہمارا یہ رمضان سے پہلے پورا ہوا اللہ کی توفیق سے تو آپ لوگ اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہیں بعد میں بات کر سکتے ہیں رمضان کے بعد بھیجتے ہیں کیونکہ دورہ قرآن کے ساتھ ہم ایک دو سبجیکٹس کرواتے ہیں دعاؤں وغیرہ کے اور مینرز کے تو باضابطہ طور پہ آپ رمضان کے بعد بھی بھیج سکتے ہیں کوئی بھی اگر آپ کے دل میں ایسا خیال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے آپ نے پوچھا تھا نا ان شاء اللہ تو جزاک اللہ خیر وسن الجزا کتنے لوگ نیت کرتے ہیں کہ سنیں گے آن لائن سے آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے نا یہ دیکھیں ویب سائٹ لکھی ہوئی نور القرآن یہ اسپیلنگ ہے نیچے اگر آپ لکھ لیں جی ہو گیا تو اتار لیں نکاح ہو گیا اوکے تو اگر آج افسوس ہے ہمارے پاس کچھ آپ کے لیے وہ مٹیریل نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ جائے اور آپ کو جا کوئی بک مارکس بھی نہیں ہے اللہ کے حکم کی بات ہے، کوئی بات نہیں، یہ اس میں بھی اللہ ہی کی کوئی خیر ہوگی، لیکن اگر آپ کے دل میں واقعی کوئی شوق آ رہا ہے تو یہ ویب سائٹ ہے، اس پہ آئیں گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا، اور وہاں ایک لنک بھی ڈائریکٹ ہوتا ہے جس میں سے ہم دورہ قرآن سن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر، واسن الجزا، دعا کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہو، کوئی ایسی بات ہو جو آپ کچھ کرنا یا پوچھنا چاہیں تو بعد میں پوچھیں، تاکہ دعا کے بعد کوئی جانا چاہے تو اپنے طور پہ جا سکے. جی کر لیں دعا ہم لوگ، ٹھیک ہے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک وعظیم سلطانک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما. یا اللہ، اس میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوگی اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ، ہمیں آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ان سب ساتھیوں اور بہنوں نے جنہوں نے سنا، ان سب کے سننے کو قبول فرما. یا اللہ، ان سے راضی ہو جائیں. یا اللہ، ان کے دکھوں کو دور فرما، بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، سب کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ، ہمارے شوہروں کو اور ان کے گھر والوں کو ہمارے دین اور دنیا کا بہترین معاون بنا. یا اللہ، اس فتنوں کے دور میں ہمیں اسلام پہ قائم رکھ. یا اللہ، ہم ظاہری گناہ کرتے ہوئے بھی ڈرے اور باطنی گناہوں سے بھی بچا. یا اللہ، اس رمضان کو تقویٰ کا رمضان بنا دے. یا اللہ، اس رمضان کو ہماری زبان کی اصلاح کا رمضان بنا دے، ہمارے دل کی اصلاح کا رمضان بنا دے. یا اللہ، ہمارے ظاہر اور باطن کی خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ، ہم اپنے سارے معاملے تیرے اوپر ڈال دیں. یا اللہ، ہمیں تیرے ساتھ وہ تعلق مل جائے کہ جو ہمیں دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دے اور ہمیں فکر آخرت کی لگ دے. یا اللہ، اس مسجد پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ، اس جگہ کو قیامت تک کے لیے آباد رکھنا. یا اللہ، جو ساتھی بھائی بہن اس کو چلا رہے ہیں اور ان کے انتظامات میں، یا اللہ، تو ان کے اپنی رحمت سے مدد کرنا. یا اللہ، جہاں بھی کوئی تیرے دین کا کام اخلاص اور سنت کے مطابق کر رہا ہے تو اپنی رحمت سے ان کی مدد کرنا. یا اللہ، اس سارے سلسلے میں جتنے ساتھی ہمارے بھی معاون ہیں، آن لائن، آن سائٹ، ناروے، اوسلو، لنڈن، مینچسٹر، یا اللہ، اور تجھے پتہ ہے کہاں کہاں یہ بات جا رہی ہے. یا اللہ، تو اپنی رحمت ان سب کے لیے آسانیاں فرما. یا اللہ، 6 کو جو ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں دورے قرآن کے، یا اللہ، اس میں برکت دے. یا اللہ، ہمیں اس کے ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھانے والا بنا. یا اللہ، شیطان کا کوئی رخنا نہ آ جائے. یا اللہ، ہمیں اس نعمت سے فائدہ اٹھانے والا بنا. یا اللہ، یہ قرآن کا بیج دل میں جاتا ہے تو عمل صالح کا درخت اگتا ہے. یا اللہ، اگر ہم نے رمضان کو ضائع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ ایک اور سال ہماری زندگی کا کم ہو جائے. یا اللہ، ہمیں اپنے بارے میں سوچنے والا بنا. یا اللہ، ہمیں دیکھنے کی توفیق دے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں اور تو نے ہمارے لیے کتنا خوبصورت جہان بنایا. یا اللہ، کمی بیشی کو معاف فرما. یا اللہ، ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمت فرما. جو دنیا میں ہے ان کو صحت، عافیت، تندرستی دے. ہماری دعاؤں کی اس پوٹلی کو ہم سے محروم دور نہ کرنا. یا اللہ، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. ہمارے استادوں پہ اپنی رحمت فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. جو دنیا میں ان کو صحت اور عافیت دے. یا اللہ، ہمارے دین کے ساتھیوں پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ، ہم سب کے فوت شدگان جو بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے اگلے مرحلے آسان فرما. ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ، اس دنیا میں قرآن کے نور کو عام کرنے والا بنا، تاکہ قبر اور پل صراط کے اندھیروں سے بچ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین. جزاک اللہ خیر، واسن الجزا. آپ کو کوئی بھی تکلیف ہوئی ہو تو معاف کریں. بند کر کے دے دیں ان لوگوں کو. ادھر اس کو کون ہے آپ کے لیے کہنا آپ کے لیے آپ نے اور ہم سب سے راضی ہو اور بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں سب سے. السلام
علیکم.
راہ جی اس کو بند کر لیں اس کی بیٹری نے
ایسا کچھ ہے کہ جیسے
اس میں دیکھ لیں کوئی آپ کے پاس ریفرنس پیپر دے دیں ان کو. وعلیکم السلام.
بچی میں نے آپ سے کہنا تھا پلیز میں دیکھ لوں میرے بیٹے کو یہ دعا کریں یہ بیمار ہے
اللہ کی دین ہے اللہ اس کی مدد کرے گا ان شاء اللہ. آپ نہ فکر کریں آپ ایک کے سکھ میں ادھر آپ کو دے دوں اللہ تعالیٰ
اپنی گاؤں میں شاور ہے کہ
جی سسٹر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہو گیا آپ رمضان کا دورہ قرآن بھی ہے اس کے لیے بھی آپ بھیج سکتے ہیں لیکن اگر بھیجنا تو پھر لندن بھیجنے میں یہاں ہوں گی.
بچیاں میری لندن جاتا رہی ہیں چھٹی ہوں گی
کوئی بات نہیں وہاں سے کوئی انتظام کر لیں لوگ جائیں گے جی جی ضرور لکھیں جزاک اللہ خیر. ایک ہی لفظ ہے آپ اگر دوسرے سے شیئر کر دیں گے نا بعد میں
جی
یہ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے. چھ تاریخ کو شروع ہو رہا ہے ٹائم جو ہوگا نا وہ 11 سے 2 بجے کا لائیو ہوگا لندن سے اور اس کے بعد پھر اس کے ہر 3-3 گھنٹے کے ریپلیس بھی اگر آپ بیلٹاک پہ پہنچ گئے نا بیلٹاک ایک نام یاد رکھ لیں اور روم کا نام اسی طرح نور القرآن کے ساتھ آگے کچھ دور ہے قرآن کا لفظ لکھا ہوگا وہ پہچان لیں گی اس کے سارے مرحلے ویب سائٹ پہ لکھے ہوں گے تو ان شاء اللہ آپ ادھر پہنچے اور یہ ویمبلے میں ہو رہا لندن میں ایسٹ لندن سے بھی لوگ آئیں گے میرا ادھر ایک گھر سے شادی بھی ہو رہا ہے آج دیکھیں جب اگر آپ کی بچیاں وہاں رہ کے کسی کے گھر میں ایک مہینے کا کرنا چاہے آنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. جی ضرور ضرور ادھر رکے کا لکھا دوں کہ امریکہ کا 713-575-87-57-1717 اور رکے کا بھی تو نمبر ہے میرے زمانہ سے لیا. آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ یہ ہے ہماری انچارج ادھر جو ہوتی ہے یو کے میں ادھر تو ان سے رابطہ رکھیں یا ان کا بھی آپس میں آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے کچھ ہیلپ لینا چاہ رہی ہوں.
آئی تھی نا تو ادھر ہم گئے تھے میں اور شائستہ گئی تھی تو آپ سے بولا تھا
میں ہیریٹیج پہ تھی.
ہاں جی
آپ میرا نمبر لے لیں
جی آپ ان سے لے لیں ان کی ہیلپ کریں جو بھی کرنا چاہیں
جو بھی مائک سسٹم جو پتا نہیں.